الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کل جو نیوز ہم انٹرنیشنل دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر، وہ ہر کچھ عرصے بعد اور ہمیشہ کی طرح اب دوبارہ سے فوکس جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف ہو گیا، یروشلم کی طرف فوکس ہو گیا، اور یہ ہمیشہ تاریخ کے اندر یہ رہا ہے کہ یروشلم کی طرف اور مسجد اقصی جو ہے وہ ہمیشہ کچھ عرصے بعد لائم لائٹ میں آتے رہتے ہیں۔ اس لیکچر کو کور کرنا جو ہے وہ اس حساب سے آسان بھی ہے کہ اس کے لیے قرآن و حدیث میں مٹیریل بھی اویلیبل ہے بہت، اور اس حساب سے مشکل بھی ہے کہ اس کی اسپریچول اسپیکٹ بھی ہے اور اس کا پولیٹیکل اسپیکٹ بھی ہے۔ یعنی کہ اگر ہم صرف اس موضوع کے اوپر ہی بات کرنا شروع ہو جائیں کہ آج کل کیا ہو رہا ہے مسجد اقصی کے اوپر، وہ ایک الگ لیکچر ہے، اور اگر ہم صرف اس کی تاریخ پڑھنا چاہیں وہ ایک الگ لیکچر ہے، اور صرف ہم اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، جو احادیث کے اندر ریفلیکٹڈ ہے، وہ ایک الگ لیکچر بنتا ہے، اور پھر اینڈ میں بھی ایون یہ کہ قیامت کے قریب بھی اس کی جو اہمیت ہے، جو قرب قیامت اس کا جو ذکر ہے، وہ ایک الگ موضوع بنتا ہے۔ تو بجائے یہ کہ بہت زیادہ ہر چیز میں ڈیٹیل میں جایا جائے، ہم تمام چیزوں کو اس تھوڑے سے لمیٹڈ ٹائم کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ اسراء یا سورہ جو بنی اسرائیل ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ٹائٹل دیا ہے اس کو، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے مسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی کا نام لے کے کیا اس کی تعریف کیا کر دی؟ وہ جس کے ارد گرد، اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے اطراف میں، ارد گرد ہم نے بہت خیر و برکت ڈال دیا۔ قرآن کے اندر کم سے کم اللہ تعالیٰ نے اس کی خیر و برکت کا 7-8 دفعہ ذکر کیا ہے، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، حنیفم مسلمم وما کان من المشرکین، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جب مسجد اقصی کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیشہ خیر و برکت کی بات کرتے ہیں، اس کے ارد گرد ہم نے بہت خیر و برکت ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جگہ ہے یہ مسجد اقصی جہاں پر ہے، جس کا ہارٹ ہے، یعنی کہ ملک شام کا، پرانے میپس دیکھیں تو یہ پورا جو تھا یہ اصل میں ملک شام کہلاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رحمت والے فرشتوں نے اس کو ڈھانپا ہوا ہے، اس سرزمین کو اللہ کے رحمت والے فرشتوں نے ڈھانپ کے رکھا ہوا ہے، اور یہ وہ واحد سرزمین ہے جس میں تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اندر تمام انبیاء جو تھے انہوں نے نماز پڑھی تھی اس کے اندر، اور اس کی تاریخ جو ہے وہ بہت قدیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے پہلی مسجد کون سی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام مکہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر سب سے پہلے وہ تعمیر ہوئی تھی، اور پھر پوچھا کہ اس کے بعد کون سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی، اور یہ پوچھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کتنا گیپ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 سال کا، اور عبادت کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اس کے اندر نماز پڑھنا یہاں پر اس سے بہتر اور کوئی عبادت کی چیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث جو بہت معروف مشہور ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، خاص طور پہ جب ہم جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، تو جب اس کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، فضائل بیان کرنے ہوتے ہیں، تو ہم کیا بیان کرتے ہیں، مسجد حرام کے اندر، مکہ کے اندر ایک نماز پڑھنا واجبات، ایک نماز اچھے اخلاص خلوص کے ساتھ پڑھنا، وہ 100,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ آگے اب مختلف احادیث کے اندر مختلف الفاظ ہیں، تو مسجد نبوی کے لیے جو زیادہ صحیح روایت ہے اس کے مطابق 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، ویسے 50,000 کا بھی ذکر ہے لیکن وہ اتنی صحیح نہیں ہے روایت۔ اور مسجد اقصی جو ہے اس کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں مسجد اقصی کے لیے بھی زیادہ کا بھی ذکر ہے، 500 کا بھی ذکر آتا ہے، لیکن جو زیادہ صحیح روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق کاؤنٹ نہیں آیا ہوا، مسجد نبوی کا ذکر آیا ہوا ہے کہ اس میں اس کے نسبت 4 گنا زیادہ ثواب ہے، جس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ کم از کم 250 گنا ثواب ہے اس کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ جتنا جس کو ثواب دینا چاہے۔ اگر ایک نماز کیا پتہ میری اور آپ کی ایک نماز اس جگہ کے اوپر وہ ہماری پوری زندگی کی بخشش کا باعث ہو جائے، تو وہ پھر کاؤنٹ تو نہ ہوا کہ یہ 10 نمازیں تھیں، 100 تھیں، 1,00,000 تھیں، وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت ہوئی کہ اس نے سب کچھ کور کر دیا۔ साथ ये भी फरमा दिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि यहाँ पर मस्जिद हराम और हरम मदीना के अंदर और मस्जिद अक्सा, इन तीन के अलावा कहीं और इबादत की गर्ज़ से सफ़र करना, नमाज़ पढ़ना कोई वैल्यू नहीं रखता। इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है, तो इन तीन के अलावा कहीं और का सफ़र इस गर्ज़ से जायज़ नहीं है। वैसे आप सफ़र कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे कोई नई मस्जिद ऐसी है जो आपका देखने का दिल चाह रहा है और बहुत अट्रैक्टिव है, या कहीं का कोई खतीब बहुत अच्छे हैं, या कहीं पर कोई बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेक्चर है, या जुम्मे का खुतबा अच्छा होता है, गैदरिंग अच्छी होती है, वो एक और बात है। लेकिन ये समझना कि यहाँ पर ज़्यादा नमाज का सवाब मिलेगा, ज़्यादा नमाज का सवाब सिर्फ इन तीन इतराफ़ से है, ये हो गया सवाब की गर्ज़ से। अब इसके बाद आगे जहाँ पे हम चलते हैं, जैसा मैंने अभी बात की थी मस्जिद की तामीर के अतबार से, जिसने अभी मैंने बात की थी स्टार्ट में कि सबसे पहले जो मस्जिद बनाई गई थी वो मक्का में तामीर हुई थी। अब इसके आगे रवायात मुख्तलिफ है इस्लामी तारीख के अंदर। अब एक रवायत ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद तामीर की थी इसकी, मस्जिद हराम की मक्का के अंदर। एक रवायत ये भी है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जो कि ज़्यादा विदाउट एनी डाउट है कि क्योंकि कुरान में उसका जिक्र आया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिल के उसकी तामीर की थी। और 40 साल का गैप है अगर, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात सही है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस तामीर के 40 साल बाद यहाँ पर तामीर हुई मस्जिद अक्सा की। और अगर अल्लाह बेहतर जानते हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहली तामीर की थी, तो फिर उसके बाद जो तामीर है वो कुछ इस्लामी किताबों के मुताबिक शीत अलैहिस्सलाम, जो आदम के बेटे थे, उनके साथ अटैच्ड है वो बात कि उन्होंने उसकी तामीर की थी उसके बाद। तो बहरहाल ये अल्लाह ताला ने मामला रखा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अरब नहीं थे, वो इराक़ के रहने वाले थे, और इलाका था जहाँ से वो बिलोंग करते थे। वो जो उनका वाक़या हो गया, जो अल्लाह ताला ने मेंशन किया हुआ है कुरान के अंदर, कि जब उनको आग में डाला गया था और अल्लाह ताला ने उनको निजात दे दी थी, तो उसके बाद अल्लाह ताला ये फरमाते हैं सूरह अंबिया के अंदर, व नजई ना हू, और हमने निजात दी उन्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, व लूतन, और लूत को उनके साथ, जो कि उनके नेफ्यू बनते थे, इलल अर्ज अल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, उस ज़मीन की तरफ हमने उनको निजात दी जिस ज़मीन में हमने बहुत खैर बरकत रखी है तमाम जहां वालों के लिए। अल्लाह ताला ने यही बात जो बाइबल है उसके अंदर भी की हुई है, या जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके अंदर भी की हुई है। द लॉर्ड हैज़ सेड टू अब्राहम, लीव योर कंट्री एंड गो टू द लैंड आई विल शो यू। सो अब्राहम लेफ्ट एज द लॉर्ड हैड टोल्ड हिम, एंड लॉर्ड यानी कि लॉट जो है वो लूत अलैहिस्सलाम के लिए, वेंट विद हिम, एंड एट दैट टाइम द कैनाइट्स वर इन दैट लैंड, इन द लैंड। द लॉर्ड अपेयर टू इब्राहिम एंड सेड टू योर ऑफस्प्रिंग आई विल गिव दिस लैंड। तो अल्लाह ताला ने बाइबल के अंदर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये वादा किया था कि ये आपकी जो नस्ल होगी उसको हम ये सरजमीन देंगे, जो आपको सरजमीन दिखाई है ये हम आपको देंगे। इसके अंदर पहले से कौमें आबाद थीं, कैनाइट्स थे, ये उससे पहले आबाद थे, उसके करीब एक और जो है, बल्कि बाइबल के अंदर इसका नाम ही लैंड ऑफ कैनाइट्स आता है शुरू के अंदर। तो अल्लाह ताला ने क्या, अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक फिर क्या हुआ कि ये वो जो सरजमीन जो है बरकत वाली, इस बरकत वाली सरजमीन के अंदर अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत अरसे की जो दुआ थी उसको हकीकत में कबूल किया कि अल्लाह ताला ने उनको इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए और फिर उसके बाद इसहाक अलैहिस्सलाम भी दिए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम दिए तो अल्लाह ताला के हुक्म से इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको लेके मक्का आ गए थे, और ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, अल्लाह ताला की मशीयत थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक नस्ल मक्का में रही, आबाद रही, और एक नस्ल जो थी वो उनकी फ़लस्तीन में आबाद रही, या मस्जिद अक्सा के अतराफ़ में आबाद रही, और ये दोनों मिले नहीं है तारीख़ के अंदर, ये हमेशा ये अलग रही हैं। दोनों जो स्ट्रीम्स हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल की, ये हमेशा सेपरेट रही हैं, अल्लाह ताला ने इनको हमेशा अलग रखा। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम था इसराइल, जिससे फिर ये बनी इसराइल की नस्ल जो थी ये चली थी आगे। एक पहले एक लेक्चर था उसके अंदर जो मैंने बातें बनी इसराइल की तारीख से रिलेटेड की थी उनको रिपीट नहीं करूँगा यहाँ पर, यहाँ पर हम फोकस रख रहे हैं अपने आप को मस्जिद अक्सा की तरफ। लेकिन बहरहाल वो नस्ल जो थी वो वहीं पर रही, याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटे जो थे, जिनका सूरह यूसुफ के अंदर काफ़ी डिटेल में जिक्र आता है कि फिर वो रहे इसी जगह पे, बैतुल मुकद्दस वाली जगह पर ही रहे। लेकिन एक वाक्या हुआ कि जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उनको भाइयों ने उनको तर्क करने के लिए एक चाल चली, और अल्लाह ताला ने उनको निजात दी, लेकिन वो ग़ुलाम बन के चले गए मिस्र की तरफ। और बाद में बहुत सालों के बाद, बहुत साल जब गुजर गए, तो उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से कोई हालात ऐसे बदले कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ के एक तरह के फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर लग गए थे बादशाह की फुल सपोर्ट के अंदर, और जो अल्लाह ताला ने उनको ताबीर, ख्वाब की जो ताबीर थी उसका इल्म दिया था उसकी वजह से। और साथ ही उनकी जो फैमिली थी वो भी एक बहाने से वापस इधर आ गई, और वो फ़लस्तीन छोड़ के, क्योंकि वहाँ पर कहर साली थी, खुश साली थी, इसलिए यहाँ पर शिफ्ट हो गए। लेकिन फिर बाद में बहुत अरसा गुजरा, तो उसके बाद वो कौम, किप्ती कौम जो कॉप्टिक्स हैं, जो फ़िरौन होते थे, उनके ग़ुलाम बन के रह गए, और बहुत साल इस तरह ही रहे। कम से कम ये 400, 500 या 600 साल की बात है कि वो कौम जो थी वो बिल्कुल ग़ुलाम बन के रह गई। फिर अल्लाह ताला ने इनको मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए निजात दी, और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए भी निजात नहीं दी, बहुत सख्त आजमाइश में अल्लाह ताला ने रखा इनको। मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी बहुत अरसे तक आजमाइश में रहे, यहाँ तक कि बने इसराइल ने ख़ुद मूसा अलैहिस्सलाम कह दिया कि मूसा आपके आने से पहले भी हमें आजमाया जाता था, आपके आने के बाद भी हमारा वही हाल है, हमारे लिए तो कुछ नहीं बदला, चैलेंजेस तो उधर के उधर ही हैं, आजमाइश और फितने तो उतने ही हैं। तो फिर उसके ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि अनकरीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे दुश्मन को हलाक कर देगा, और फिर तुम्हें एक सरजमीन के ऊपर बादशाह देगा और आजमाएगा कि तुम क्या करते हो। फिर जब फिरौन को अल्लाह ताला ने गर्क कर दिया, तो अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत 137 के अंदर जिक्र किया हुआ है कि उन्हें उसके बाद वारिस बनाया था उस कौम को जिसको बहुत आजमाया जा रहा था, उसको उस सरजमीन के मशरक का भी बनाया वारिस और उसके मगरिब का भी बनाया, अल्लती बार रखना फीहा, वो सरजमीन जिसमें हमने बहुत खैर व बरकत रखी है। यह अल्लाह ताला की तरफ से एक ऑर्डर था, डिवाइन ऑर्डर के ज़रिए फिरौन गर्क हो गया। इसमें किताल का लम्हा नहीं आया, मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम बची थी वो अल्लाह ताला के हुक्म से बची थी। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला का फ़ैसला हो गया कि अब हमने इस सरजमीन को इनके लिए दोबारा हमने वारिस बना दिया, उनकी आजमाइश के ऊपर जो उन्होंने सख्तियाँ झेली थी हमने उनको गिफ्ट कर दिया, ये सरजमीन उसका मशरक भी उसका मगरब भी, यानी कि पूरा एरिया गिफ्ट कर दिया। और क्या हुक्म था उनके लिए? अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए मनोसलवा भी है, अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हारे ऊपर बादलों का साया भी है, तुम्हारे प्यास लगने पे पानी भी तुम्हें मुहैया हो जाएगा, सारी नेमतें मौजूद हैं। तुमने उधर जाके उस कौम का सामना करना है, कौन सी कौम? यही कैनाइट्स, उन कौम का सामना करना है और उनको सरजमीन से निकालना है। क्योंकि इससे पहले जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे तो कोई किताल का जिक्र नहीं था, वो कौम रही वहाँ पे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए उनके साथ, लूत अलैहिस्सलाम फिर आगे चले गए थे जो आजकल का जॉर्डन है, उस सरजमीन की तरफ लूत अलैहिस्सलाम चले गए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ पर रहे, उनकी औलाद वहाँ पर रही, लेकिन उनकी बादशाहत का, सल्तनत का कोई जिक्र नहीं आता। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए जब उनको हुक्म हुआ कि अब आपने जाना है वहाँ पर, तो कौम ने बिल्कुल इनकार कर दिया, कौम ने कह दिया फ़ज़हब अंता व रब्बू का फ़कातिला, जाएँ आप जाके लड़ें और आपका रब भी जाके लड़े, कताल करें उनके साथ, हम तो यहीं पर ही हैं। इस कदर बेहिसी का आलम हुआ उस कौम के ऊपर कि उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि वही नबी, वही रसूल जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने बचाया, सारे मौजज़ात अपनी आँखों से देखे, गर्क होते देखे फ़िरौन को अपनी आँखों के सामने, और अल्लाह के रसूल को इस तरह इनकार कर दिया कि जाएँ आप जाके लड़ें, हम नहीं हिलने वाले यहाँ से, बहुत लड़ने वाली कौम है वो। तो क्या हुक्म हुआ फिर अल्लाह की तरफ से? अब 40 साल तक के लिए सरजमीन हराम हो गई उनके ऊपर, 40 साल इधर भटकते रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये कहा भी, रिक्वेस्ट की कि अल्लाह ताला मुझे अलग कर दें इस कौम से, इस कौम के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता, अलग कर दें मुझे इस कौम से। लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की बात ही मानी, रहना इसी कौम में पड़ेगा। उन्हीं नाफरमानों के साथ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम रहे 40 साल, 40 साल रहे। और उसके बीच में ऑफ कोर्स बाइबल को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर बहुत डिटेल्स भी आती हैं कि उनके साथ क्या क्या वाक़यात होते रहे, उन्होंने बहुत तफसील के अंदर उसको किया हुआ है। हमारे पास जो अल्लाह ताला ने हमें जो दिया है कुरान, उसके अंदर गालिबन मूसा अलैहिस्सलाम का जो उससे हट के वाक़यात हैं इस रिदम में, वो शायद सिर्फ वही हैं जो खेजर के साथ उनका मुलाकात हुई थी और जो वाक़या हुआ था। मूसा अलैहिस्सलाम को बाइबल के मुताबिक अल्लाह ताला ने 120 साल की उम्र दी थी, तो जब उनका आखिरी वक्त करीब हुआ, 40 साल वो उसी सिनाई पेनिनसुला या जो सऊदी अरब का जो टॉप वाला हिस्सा है उधर ही भटकते रहे वो, 40 साल भटकते रहे, लॉस्ट बिल्कुल वहाँ पे, कि निकलना किस तरह, क्योंकि अल्लाह की तरफ से था कि ये कभी यहाँ से निकलेंगे नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम का जब वक्त करीब हो गया, ये वाक़या जो है ये हमारी हदीस की किताबों में भी है और बाइबल के अंदर भी है, बल्कि बाइबल के अंदर ये पूरा जो आखिरी चैप्टर है इसका वो मूसा अलैहिस्सलाम की मौत से रिलेटेड ही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब मलकुल मौत आए, जिस तरह हदीस के अंदर आता है, और उन्होंने आके, जिस तरह नबी के लिए आपने पढ़ा होगा कि नबी से इजाज़त होती है एक तरह की, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाहिश का इज़हार किया था कि मेरे नसीब में नहीं हुई वही सरज़मीन अल्लाह तबारकना हौला, कि जिसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने खैर व बरकत रखी है, आखिरी ख्वाहिश कि मैं उसको देख सकूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़ के उसके इतने करीब गए, हदीस के अंदर भी आता है कि वो बिल्कुल इतने दूर, इतने करीब पहुंच गए उस सरज़मीन के, कि जिस तरह स्टोन की जो थ्रो होती है ना, जब पत्थर के जो जितना आप दूर फेंकते, इतने करीब उनको वो पूरा मंजर दिखाया गया। बाइबल के अंदर भी उसी पहाड़ का जिक्र है जिस पहाड़ पर खड़े होकर उन्होंने उस सरज़मीन को देखा, वो उनका आखिरी लम्हा था। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह हदीस बयान की है तो ये फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का किसी को नहीं पता कहाँ पर है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर हम वहाँ होते, मदीना में हैं अभी या अरब के अंदर है, अगर हम वहाँ होते तो मैं तुम्हें बताता कि उनकी कब्र कहाँ है। मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र अभी भी अननोन है, आइडिया ज़रूर है कि कहाँ पे है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़ के गए थे और वहाँ पर वो फिर फौत उधर ही हुए। जब मूसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, हारून अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए, तो वो साथी जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए, जब मुलाकात हुई थी, खिज़र कौन है उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो नबी थे या नहीं थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो उनके साथी थे, जो ग़ुलाम जिनका जिक्र आता है, यूशा बिन नून या बाइबल के अंदर जोशुआ, वो फिर उनके साथ फिर वो नबी बने थे, और उनके अंडर जब फ़लस्तीन उन्होंने फ़तह किया था, कुरान के अंदर भी उसका जिक्र आता है और जो पहले था उसके अंदर भी उस चीज़ को रिपीट कर दिया गया, तो उसके बाद फिर इन लोगों के वहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर इनको एक अरसा मिला, कुछ अरसा मिला जब ये वहाँ पर आबाद हुए थे, लेकिन कोई गवर्नमेंट उस लेवल की कबीलों की शक्ल इख्तियार की, 12 कबीले थे तो 12 कबीलों ने 12-12 अपने इलाके बना लिया। कुछ डेकेड्स और गुजरी तो दोबारा इनके ऊपर डाउनफॉल आ गया, इर्द गिर्द के कबाइल ने दोबारा इनको मकलूब कर लिया। फिर वो वाक्या आता है जो सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने मेंशन किया है कि ये लोग फिर गए अपने कौम के जो उस वक्त के नबी थे, उनसे कहा था कि हमारे लिए आपको बादशाह मुकर्रर करें, और फिर एक बादशाह मुकर्रर हुआ उनके लिए। वो तफसील, सारी तफसील को स्किप करते हुए, तो यही जो मुशरिक कबाइल थे, कैनाइट्स और फिलिस्टाइन्स, इनके जो इनका जो वॉरियर था गोलायत या जालूत, उनको कत्ल करके फिर दाऊद अलैहिस्सलाम का और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर शुरू होता है मौजाना तौर पे। और ये पहला प्रॉब्ली पूरी तारीख के अंदर पहली दफ़ा आप कह सकते हैं एक स्टेट के लेवल के ऊपर एक इस्लामी रियासत बनी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम उसके बादशाह थे, वो ऐसा नहीं है कि कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वो बादशाह थे और अल्लाह ताला ने उन्हीं को खलीफा भी कहा है अपना। और उनके दौर के अंदर बाइबल के मुताबिक उनको हुक्म था कि उन्होंने बकायदा एक बड़ी तामीर करनी है मस्जिद अक्सा की, लेकिन वो नहीं कर पाए थे, उन्होंने स्टार्ट लिया उसका लेकिन नहीं कर पाए। वो फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में वो हुआ, अरूज पे पहुंचा। हम उसे मस्जिद अक्सा कहेंगे, लेकिन बाइबल के अंदर क्रिश्चियंस और ज्यूज़ उसको टेम्पल ऑफ सोलोमन कहते हैं, और जिसके अंदर उनकी इबादत भी होती थी, वो नमाज भी पढ़ते थे, इतकाफ़ भी करते थे और कुर्बानी भी दिया करते थे, और वो उनके जो ताकत का एक इजहार था। इतनी दूर तक के जो मलका सबा जो थी उसका भी जिक्र आता है कि उसको भी किस तरह अपने अंडर कर दिया था कि वो तर्क करे अपने मुशरिकाना तौर ज़िंदगी को और छोड़ के इस तरफ आए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे उनको भी अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत 81 के अंदर जिक्र किया हुआ है, और ज़मीन का अगेन वही जब जिक्र आया ज़मीन का, इलल अर्ज़ अल्लती बारकना फ़ीहा, जिसके अंदर हमने बहुत खैर व बरकत रखी है तमाम आलमीन के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में जो टेंपल बनी थी वो फिर कुछ अरसे के बाद 587 BC के अंदर वो इराक़ के जो बादशाह था उसके साथ एक वाक़या हुआ था और उसने आके दाखिल होके और बिल्कुल तहस नहस ख़त्म कर दिया। फिर दोबारा उसको कुछ अरसे के बाद जब ये आज़ाद हुए थे, बेबीलोन की ग़ुलामी से आज़ाद हुए थे, दोबारा वापस आए थे फ़लस्तीन को, दोबारा इन्होंने आबाद किया था और दोबारा वहाँ पर एक टेम्पल बनाई थी, सेकेंड टेम्पल के बाद फिर उसके ये दौर गुजर रहा था उनका। کہ جس ٹائم کے اندر، جس دور کے اندر پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہ ان کی، کیونکہ کتابوں کے اندر یہ پرومس تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرزمین وعدہ کیا آپ کے ساتھ، یہ سرزمین کا، اور یہاں پہ آپ نے ان کے جو خلافت ہوگی ان کو جب وعدہ دیا گیا تھا وہ یہاں سے قائم ہوگی اور اٹرنل ہوگی، یعنی کہ اس وہ پھر ختم نہیں ہوگی، یونیورسل ہوگی. اور ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کا وعدہ کیا تھا، خاص طور پہ جب وہ غلامی میں تھے ادھر بیبلون کے اندر، کہ آپ کے لیے ایک مسیح آئے گا جو بچائے گا آپ کو تمام آپ کی مشکلات سے، تمام آپ کی پریشانیوں سے نکالے گا. یہ ٹاپک بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، اس لیے میں اس کو کوئکلی گزارتے ہوئے، جب آئے عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ ایک وقت میں تین رسول ہو گئے، رسول اور نبی کل تین ہو گئے. زکریہ علیہ السلام بھی موجود تھے، یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. اور مسجد اقصیٰ اور انہی کے اندر اعتراف کے اندر وہ بالکل وہ جگہ بھی ہیں جہاں پہ ان کا قیام تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ کرتے تھے، ابھی وہ ٹیمپل بنی ہوئی تھی ان کی جس کو وہ ٹیمپل کہتے ہیں. لیکن ایونچولی جب جو ان کے رابائز جو تھے یا ان کے جو علماء ہم کہہ لیں، جو ان کے مفتی تھے، ان کی جب منوپلی کو انہوں نے ٹوٹتے ہوئے دیکھا کہ یہ تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا اگر ہم نے ان کی بات مانی، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے مراد کیا ہے، کہ بہت بڑے واریئر ہوں گے، بہت ہمیں جو ہے نا لڑ کے ہمیں نکالیں گے. وہ آ کے انہیں کی اصلاح کیے جا رہے تھے کہ تم لوگوں نے دین کو ایک بزنس کا بہانہ بنایا ہوا ہے، تم نے دین کو ایک بزنس کا بہانہ بنایا ہوا ہے. انہوں نے رومنز کے ساتھ مل کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کا بندوبست کر دیا. تو جہاں پہ انہوں نے اپنی طرف سے سولی چڑھایا، اللہ تعالیٰ نے تو سولی نہیں چڑھنے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور کو سولی چڑھا دیا گیا تھا. تو وہ اگین یہ بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ جو واقعہ اس کے اندر جو سارا مینشن ہوا ہے وہ ساری یہ سرزمین ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا 33 CE کے اندر. پھر اس کے تقریباً 30-35 سال کے بعد یہودیوں نے ایک بغاوت کرنے کی کوشش کی. اس بغاوت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، قرآن کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، تو اس کا حوالہ دیے بغیر آگے ہم چلتے ہیں کہ بالآخر رومنز کے ذریعے دوبارہ فلسطین کے شہر کو دوبارہ تباہ کر دیا گیا تھا، دوبارہ ختم کر دیا گیا تھا اسے. مسجد اقصیٰ یا جو ٹیمپل آف سولومن ہے اس کو دوبارہ گرا دیا گیا تھا، اور اس میں سے کچھ نہیں بچا تھا. جو بچا تھا وہ صرف ایک دیوار کا حصہ تھا جو ابھی تک بچا ہوا ہے. 2000 سال ہو گئے ہیں، وہ دیوار کا حصہ ابھی تک بچا ہوا ہے، باقی اس پورے کو گرا دیا گیا تھا. پہلی دفعہ جو ہوا تھا تب کم از کم 6 لاکھ کا آتا ہے کہ 6 لاکھ قتل ہوئے تھے تب، اور باقی 6 لاکھ کم از کم قیدی بنے تھے. اس دفعہ کا جو ہے اس کے اندر بھی کئی لوگ جو تھے ان کو بھی قتل کیا گیا، اور ان کو غلام بنا کے شہر کو بالکل خالی کر دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کے تحت تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ جو میری سرزمین ہے یہ صرف نیک لوگ جو ہوں گے ان کے ہو گئے، تم لوگوں نے عیسیٰ کو جھٹلا دیا ہے تو تمہارے لیے یہ سرزمین ختم ہو گئی ہے. یہ آیت سورہ انبیاء کے اندر آتی ہے بنی اسرائیل کے رسولوں کا ذکر کر کے اور انبیاء کا ذکر کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حرام ان علا کر یتن اہلک نہ ہا، اور ہم نے حرام کر دیا، لکھ دیا کہ حرام ہو گیا ہے اب اس شہر کے رہنے والوں کے لیے کہ وہ انہم لا یرجعون، کہ اب وہ ہرگز نہیں لوٹیں گے شہر کی طرف. پہلے کیا ہوا تھا، یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، تو پھر وہ دوبارہ آئے تھے اور داؤد علیہ السلام کا دور آیا اور ایک بہت عروج دیکھا انہوں نے، پھر ان کو دوبارہ نکال دیا گیا تھا، پھر دوبارہ یہ آئے تھے اور انہوں نے دوبارہ ٹیمپل اپنی بنائی اور وہ اس کو مقام حاصل کیا. لیکن جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، اتنے نبی آنے کے بعد، اتنا کچھ آنے کے بعد، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کیا، تو اب جب نکالا ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ فرما دیا وہ حرام ان علا کر یتن اہلک نہ ہا، حرام کر دیا کہ اس قوم نے اب اس رہنے اس بستی میں واپس نہیں داخل ہونا، انہم لا یرجعون، کہ وہ ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس بستی کے اندر. عام طور پہ اس آیت کو جو افیلیٹ جو ہے نا وہ جنرلائز کر کے کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد تقریباً 500-600 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور رسول بنا کے بھیجا تمام عالمین کے لیے، تو وہ دور تھا سارا مکہ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کا اللہ تعالیٰ نے وقت دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے، یثرب میں گئے، وہاں پہ یہود کے ساتھ بھی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹریول نہیں تھا، نہ نالج زیادہ تھی، دنیاوی اعتبار سے. لیکن جب مکہ کا آخری وقت قریب تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فلسطین جو تھا یہ مسلمانوں کے ہاتھوں آزاد ہوا بھی نہیں تھا اور یہ ہونا بھی نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں, تو اللہ تعالیٰ نے ایک یونیک ٹرپ ارینج کروایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اسراء اور معراج کا, کہ اللہ تعالیٰ نے جب وہ وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت وہ مشکل وقت ہو گیا تھا, مکہ کا دور آخری اپنے ٹائم کے اندر بہت ڈیفیکلٹ ہوتا گیا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو شہید ہوتے تک دیکھا تھا, کچھ کو مجبوراً ہجرت کر کے جانا پڑا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی مارا بھی جاتا تھا, اور صبر وہ بہت مشکل وقت کے مرحلوں میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج اور اسراء کا سفر کروایا. تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھوائی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کے ساتوں آسمان دکھائے گئے اور سب کچھ دکھایا گیا, جنت دکھائی گئی, جہنم دکھائی گئی, سارا کچھ دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ آسمانی سفر شروع ہو, اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے بیت المقدس دکھائی جا کے, اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی ادا کی اور پھر انبیاء کو لیڈ بھی کیا, جس کا ذکر سورہ اسراء کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پاک ہے, اللہ تعالیٰ عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اپنے بندے کو وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا, جس کی ارگرد بہت خیر و برکت رکھی ہے, اور تمام انبیاء کی فالو کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی. اس کے بعد آسمانی سفر شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا گیا. تو آلدو وہ مسلمانوں کے قبضے میں جگہ نہیں تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ٹریول نہیں کرنا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں اس نے فتح ہونا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ٹرپ ارینج کروایا. تو یہ جو تصویر آپ کے سامنے ابھی آ رہی ہے, اس کے اندر یہ جو بنا ہوا ہے, یہ گولڈن بنا ہوا ہے, یہ مسجد جو ہے اصل میں یہ ہے ڈوم آف راک. یہ ڈوم بنایا گیا ایک راک کے اوپر, ایک پتھر کے اوپر. اس پتھر کے بارے میں کیا خاص بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کہ آسمان کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. یہ کسی واضح حدیث میں نہیں ہے, لیکن تاریخ اسلام کی تمام کتابوں میں اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آسمان کا سفر تھا وہ اس پتھر کے اوپر سے ابتدا ہوئی تھی اس کی, اور براق جو جانور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اس دیوار کی طرف باندھا تھا, اس والی سائڈ کی طرف. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سفر ہوا مسجد اقصیٰ کی طرف, نہ باقی صحابہ جو تھے ان کا سفر ہوا کہ وہ جاتے رہے نماز پڑھنے کے لیے یا کچھ اس طرح, ایسا کچھ نہیں ہوا. البتہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ان کے دور کے بالکل نہیں کہ آپ کہہ لیں کہ آغاز سے پہلے, جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, تو مسلمان ان کے بارڈرز کے قریب پہنچ گئے تھے. حضرت عمر کے جب خلافت آئی تو انہوں نے حضرت عبیداللہ بن جرہ کو اپنا کمانڈر ان چیف بنا کے اور یہاں پہ سیزر کروایا اس کا. جو ادھر کے اس وقت کا جو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پریس تھا وہاں پر, اس نے حضرت ابو عبیداللہ بن جرہ کی جو سادگی تھی اس کو دیکھ کے سمجھا تھا کہ یہ وہ بادشاہ جو ہمارے یہاں پیشن گوئی ہے. لیکن جب اس کو کلیئر ہو گیا کہ یہ وہ نہیں ہے, تو حضرت ابو عبیداللہ نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میں اپنے جو ہمارے جو ہمارے بادشاہ نہیں ہوتا, ہمارے جو امیر المومنین ہیں میں ان کو بلاؤں گا, آپ ان سے بات کر لیں. حضرت عمر بن خطاب کو خط بھیجا گیا, حضرت عمر بن خطاب نے پھر ٹریول کا بندوبست کیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خط کے ذریعے کہا گیا کہ آپ ادھر آئیں, تشریف لائیں اور فتح ہو جائے گی. حضرت عمر بن خطاب نے سفر کیا, کس طرح؟ ایک اونٹ رکھا, ایک غلام رکھا, سفر کا ارادہ کر لیا. پہلے بیچ میں کچھ صحابی تھے, انہوں نے مدینہ کے اندر ہی حضرت عمر کو یہ کہا کہ یہ چال ہو سکتی ہے, کیا پتہ یہ اوریجنل لیٹر نہ آیا ہو, کیا پتہ یہ چال ہو آپ کو پھنسانے کی, اور کہ آپ کے جو, کیونکہ ہماری جو خلافت ہے وہ آپ کے بل بوتے پہ چل رہی ہے, تو اس لیے ٹریپ ہو. لیکن حضرت عمر جو تھے انہوں نے اس کا کیا, اور بغیر کسی ڈر کے اور بغیر کسی خطرے کے انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا. اب اس دور کے اندر سفر جو ہوتا تھا وہ مہینہ لے لیا کرتا تھا. ایک اونٹ رکھا, حالانکہ آپ کے لیے کوئی حکم کی کمی نہیں تھی, آپ حکم دیتے اور کئی اونٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے بالکل جو سمجھا کہ جو کافی ہے بس یہی کافی ہے, اور سفر کس طرح کیا, ایک دفعہ خود اونٹ پہ بیٹھتے تھے کیونکہ دونوں بیٹھ نہیں سکتے تھے, سامان بھی رکھا ہوا تھا, ایک دفعہ خود بیٹھتے تھے, غلام اونٹ کو لے کے چلتا تھا, پھر کبھی خود लेके चलना होता था और ग़ुलाम के ऊपर बिठाते थे। जब बैतुल मुकद्दस के करीब पहुंचने लगे, उस वक्त वॉल्ड सिटीज़ होती थी, दीवारें बनी हुई होती थी शहरों के तो इर्द गिर्द, तो जब बैतुल मुकद्दस के बिल्कुल करीब पहुंचे और इत्तेफाक से बारी जो थी वो ग़ुलाम की थी कि वो बैठेगा, ग़ुलाम ने इनको बहुत कहा, उन्होंने कहा नहीं हरगिज़ नहीं, बारी तुम्हारी है, तुम ही बैठोगे उसके ऊपर। जब आ रहे थे तो मुसलमानों को पता लगा, मुसलमानों ने उनको कह दिया कि दीवारों पर चढ़ के देख लो, वो हमारे आ रहे हैं अमीरुल मोमिनीन। और उसके ऊपर हज़रत उमर जब आ रहे थे, तो उनके कपड़ों के ऊपर कई तयबंद लगे हुए थे, फिर रास्ते में गंदा रास्ता था जिसके अंदर कीचड़ सा था, तो वहाँ से जूते उतार के पकड़ते हुए आ रहे हैं। इस सारे मंजर को देख के, क्योंकि ये बेजेंटाइन एम्पायर था, इनके बादशाहों के महल होते थे, बड़े बड़े इनके खेमे होते थे, सोने के कारपेट और उन्होंने कपड़े अपने पहने हुए होते थे, और ये मंजर देख के तो उनको तो बिल्कुल भी बात ना समझ लगी कि ये किस तरह का मंजर हो सकता है। ये उसके ऊपर जब बुलाया गया, हज़रत उमर से बात की और उसने लिटरली हैंड ओवर किया, बगैर कोई लड़ाई झड़ाई लड़े हुए लिटरली हैंड ओवर किया उसने मस्जिद अक्सा और ये पूरा जो जेरूशलम का शहर था आपके हवाले, ये हज़रत उमर ने उनके साथ एग्रीमेंट करके और पूरा अमन और तहफ़ दिया उनको कि आपके जो यहाँ पे रहना चाहेगा वो रह सकता है, जो जाना चाहेगा उसको पूरा अमन हासिल होगा जब तक वो अपने मकाम तक नहीं पहुँच सकता, अगर आपकी इबादत की यहाँ पे मकामात हैं तो उनके तहफ़ रहेगा, उनको नहीं छेड़ा जाएगा, ख़राब नहीं किया जाएगा। और एक स्पेशल बात उसमें ऐड ये भी थी, क्योंकि वो ईसाई थे और ईसाई अपने अभी रिलीजन के करीब थे, तो उनको शदीद नफ़रत थी ईसा अलैहिस्सलाम के उनके मुताबिक सूली चढ़ाने वाले साजिशों के ऊपर, वो कौन थे, यहूदी थे, उनके मुताबिक उनको उनसे शदीद नफ़रत थी, तो उन्होंने कहा था इनको आपने आबाद नहीं होने देना यहाँ पर। और तब ये हाल भी था उनका कि उनकी जो इबादत की जगह थी जो ईसाइयों की जो यहूदियों की थी, जो टेंपल ऑफ सोलोमन वाली जगह थी, उन मकामात के ऊपर उन्होंने कूड़े रखे होते थे, डाले होते थे, हज़रत उमर ने आके उसको साफ़ करवाया और नमाज़ पढ़ी। जब हज़रत उमर को मौका मिला था नमाज़ पढ़ने का, तो हज़रत उमर को इस जगह को प्रपोज़ किया था, ये चर्च है जो क्रिश्चियंस का उस जगह पर सबसे ज़्यादा होली साइट है, वो क्यों, क्योंकि ये वो पहाड़ का एक टॉप एरिया था जहाँ पे उनके मुताबिक ईसा अलैहिस्सलाम सूली चढ़े थे, वहाँ से लेके उनको क्रॉस पकड़ा के 14 मकामात पे रोकते हुए, उनको अज़ियत देते हुए यहाँ पे लाके उनको बिलाखिर सूली दी गई थी, उन्होंने ये चर्च बनाया हुआ। ये उस वक्त की कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बीच में गिरा दिया, टूट गया था, ये बाद की कंस्ट्रक्शन है। तो होली सेपल का सबसे उनके लिए मुकद्दस जगह थी है। और यहीं पर हज़रत उमर को प्रपोज़ किया था कि आपने नमाज़ पढ़नी है तो आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ लें। हज़रत उमर ने नमाज़ नहीं पढ़ी, ये कह के, ये नहीं कि कोई बुरा कहा या कुछ, उन्होंने कहा कि अगर मैंने यहाँ पे नमाज़ पढ़ ली है तो आइंदा आने वाले मुसलमानों को जवाज़ मिल जाएगा कि वो चर्चेज के ऊपर अपना हक समझेंगे, कब्ज़ा कर सकेंगे। वो हम तो अभी भी उस तालीमात से दूर हैं, काफ़ी हम उन तालीमात से दूर हैं जो तहफ़ दिया गया था, तभी तो क्वेटा में वाक़ा हुआ है वो चर्च के अंदर जो किया गया। हज़रत उमर ने जहाँ नमाज़ पढ़ी थी वो ये मकाम था जिसके ऊपर अब मस्जिद अक्सा बनी है, जिसकी ये तस्वीर है। और उस वक्त की जो मस्जिद थी, और उस वक्त की जो मस्जिद थी वो असल में बेसमेंट में थी, ये बाद में ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई है, क्योंकि ये एक एलिवेटेड एरिया है, पहाड़ी सा एरिया ही है। ये जो डोम ऑफ रॉक है, ये वो मकाम हो गया जहाँ से रसूल सल्लम का आसमानी सफ़र शुरू हुआ था, ये मस्जिद अक्सा हो गई, ओवरऑल ये सारी मस्जिद अक्सा ही है, पूरा कोर्ट यार्ड समेत सारा मस्जिद अक्सा ही है। इसका अगर बहुत स्पेसिफिक नाम लिया जाए तो मस्जिद किबली कहते हैं इसे, जहाँ पे किबला जो था पहले, जिसको पहला किबला बनाया गया था, बाद में किबला चेंज हो गया था। इसके साथ फिर और भी मुख्तलिफ मकामात हैं, जिसमें मैंने बता दिया कि ये वो एरिया है जहाँ पे बुराक बांधा था, तो यहाँ पे एक बुराक मस्जिद भी है छोटी सी। ये वो दीवार है जो सेकेंड टेम्पल जो उनकी थी उसकी दीवार वाहिद रह गई है, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये मुसलमान ही हैं, ये यहूदी हैं, और इनमें से होता है कुछ ईसाई भी हों। आप वीडियो देखते हैं, मिसाल के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बना और उसने इसराइल का विजिट किया, तो वो ऑल्दो वो क्रिश्चियन है, कैसा क्रिश्चियन है वो अलग जानता है बेहतर, लेकिन ऑल्दो वो बाय फेथ डिक्लेयर्ड जो है वो क्रिश्चियन है, लेकिन उसने आके यहाँ पे दुआ की इस दीवार के आगे, और जो उनकी टोपी होती है यहूदियों की, वो किपा जिसे बोलते हैं, उसने वो भी पहनी हुई थी। बराक ओबामा भी आया, बुश भी आया, क्लिंटन भी आया, सब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे आके हाजिरी ज़रूर देते हैं, एक प्रेयर ज़रूर करते हैं आके, और ये दीवार के जो खाने होते हैं उसके अंदर अपनी वो एक जो पर्ची होती है वो डाल देते हैं। जो डोम ऑफ रॉक है उसके अंदर का मंजर ये है कि ये इस खास एरिया को हाईलाइट किया गया है, उसको ऊपर से देखें तो वो पत्थर उसको मेंटेन रिटेन रखा गया है, جس کے اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا. اور یہ جو نیچے سیڑھیاں جا رہی ہیں اس کے اندر, یہ اصل میں پتھر جو ہے اسی پتھر کے نیچے ایک کیو بھی ہے. تو یہ اس کے اندر کا منظر ہے کہ اس کے نیچے بھی انہوں نے وہ نماز کی. اگین اوور آل ساری مسجد اقصیٰ کا ہی پارٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اوور آل. اور جب کیونکہ آج کل وہ پوزیشن میں ہے اسرائیل کے, تو جب چاہتے ہیں وہ اس کو بند کر دیتے ہیں سیکورٹی ریزنز کی وجہ سے, جب چاہتے ہیں کہ اس کو وہ پھر کھول بھی دیتے ہیں. حضرت عمر کے دور کے بعد جب یہ ان کے پاس اس کی کسٹڈی آئی تھی, تو یہود اب آیا کرتے تھے یہاں پہ لیکن عبادت کر کے چلے جایا کرتے تھے, یہاں پہ رہنے کا اختیار نہیں تھا, جس طرح ٹورسٹ کے طور پہ ہوتے ہیں. عیسائی یہاں پہ رہتے رہے ہارمنی کے ساتھ رہتے ہوئے, مسلمان بھی یہاں پہ رہے ہارمنی کے ساتھ رہے. اور بلکہ ایسے واقعات بھی تاریخ کے اندر آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہارون رشید کا جو دور آیا تھا مسلمانوں کے خلیفہ گزرے میں, تو ان کے دور کے اندر مطلب کہ ٹالرنس کا یہ لیول تھا کہ جو رومن امپائر تھا, آل دو ویسے تو ایٹ وار تھے, لیکن رومن امپائر کو انہوں نے یہ اجازت دی ہوئی تھی کہ رومن امپائر نے کہا کہ ہمارے جو چرچ اور جو ہماری ہولی سائٹس ہیں نا, ہم نے ان کی رینوویشن کرنی ہے, ہم نے ریکنسٹرکشن کرنی ہے, رینوویشن کرنی ہے. تو خلیفہ ہارون رشید نے ان کو بالکل اجازت دی تھی کہ آپ آ کے یہاں پہ اپنی رینوویشن اور ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں جس طرح بھی آپ نے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ معاملہ چلتا رہا تھا. البتہ مسلمانوں کے بعد میں آنے والے جو تھے بگاڑ تھا, اور اس کے اندر بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جس سے وہ بہانے ملے تھے جو ایونچولی لیڈ کیا جس نے کروسیڈز کی طرف. کروسیڈز کب ہوئے تھے؟ 1095 کے اندر. 1095 کے اندر اناؤنس ہو گیا تھا فرانس کے اندر کلیمونٹ شہر کے اندر کہ ہم کروسیڈز کا آغاز کریں گے, ہماری ہولی سائٹس جو ہیں وہ ہم ان کو واپس ریکلیم کریں گے. اور یہ وہ وقت تھا جب مسلمان جو تھے, اب بنو امیہ صرف خلیفہ نہیں تھے, کچھ جگہوں پہ بنو عباس تھے, کچھ جگہوں پہ فاطمین تھے, کچھ جگہوں کے اوپر کوئی تھے, کچھ جگہوں پہ کوئی تھے, آپس میں حصوں میں بٹے ہوئے تھے. اور جب پتہ لگا کہ جی آ رہے ہیں اٹیک کے لیے کروسیڈز کی یونائٹیڈ آرمی آ رہی ہے, بہت بڑی کوالیشن آ رہی ہے جس کے اندر یورپ کی تمام طاقتیں جو تھیں وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے پوپ کے کہنے کے اوپر وہ آ گئے تھے. ویسے تو آپس میں لڑا کرتے تھے لیکن یہ پہلی کوالیشن ہوئی تھی, گرینڈ کوالیشن رومنز کی طرف سے جس کا رخ ہوا تھا اسلام کی طرف. اور انہوں نے آ کے یہاں پہ اٹیک کیا, اور ان کی اپنی کیونکہ مسلمان تو ہر ایک کو قتل کر دیا گیا تھا, غلام بھی نہیں بنائے انہوں نے, سب کو قتل کر دیا تھا. تو اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایون ٹیمپل آف سلیمان کے اندر یعنی کہ مسجد اقصیٰ کے اندر اتنا خون تھا کہ جو جسم تھے وہ تیر رہے ہوتے تھے, اور گلیوں کے اندر اتنا خون تھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کے آدھے جو ٹانگیں ہیں وہاں تک خون ٹچ ہوا ہوتا تھا. اور اس قدر بو آئی تھی کہ ان کو خود اس جگہ سے کچھ دنوں کے لیے جانا پڑا تھا, چھوڑنا پڑا تھا اس کو, کہ اس قدر بو آ رہی تھی. یہ جو خدا کے نام کے اوپر انہوں نے کروسیڈز کی تھیں اس کا یہ حساب تھا. وہاں اس کے بعد 88 ایئرز لگے تھے مسلمانوں کو جگہ کلیم بیک کرنے میں, اور 88 ایئرز کے اندر وجہ یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں میں کسی نے کیا ہی نہیں. شروع میں جن لوگوں نے وہاں سے بھاگ کے نکلے تھے وہ بغداد تک گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے کہ پکار کی تھی ان کو, ساری ایپیسوڈ بتائی تھی کہ ہوا کیا کیا یہاں پہ, کس طرح کا ظلم ہوا ہے. لیکن ہر کوئی جو تھا وہ بس اپنی بادشاہت اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بن گئی تھیں مسلمانوں کی, ان کو بچانے کے اندر لگا ہوا تھا. مسلمانوں میں صرف یہ نہیں کہ سیاؤ الدین ایوبی سے پہلے بھی مودود بھی آئے تھے لیکن ایک لیڈر کے طور پہ سامنے آئے تھے, مسلمانوں کے ہی ڈفرینٹ گروہوں نے کروسیڈرز کے ساتھ مل کے ان کو قتل کروا دیا, اسیسینیٹ کر دیا. اماد الدین زنگی بھی تھے, ان کے ساتھ بھی یہ انجام ہوا تھا. پھر نور الدین زنگی کا بھی وقت آیا تھا, ایونچولی پھر صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو صاف کیا تھا. اور انہوں نے صرف قتال یا جہاد جو ہے وہ کروسیڈرز کے خلاف نہیں کیا تھا, بلکہ جو ارد گرد کے جو دوسرے تھے, جو مسلمان تو کہنے کو تھے سلطنتیں لیکن وہ کروسیڈرز کے ساتھ مل کے ہمیشہ وہ چال بازی کرتے تھے, ان کے خلاف بھی جہاد کر کے اس کو پاک صاف کیا تھا. صلاح الدین ایوبی نے کس طرح فتح کیا تھا کہ جو کیئر ٹیکر تھا وہاں کا, اس کو آفر یہ کر دی تھی کہ آپ کو نہ ہم کو, کیونکہ تاریخ کیا ہوئی تھی پہلے اس قدر خون بہایا گیا تھا تو وہ ڈر یہ رہے تھے, بلکہ انفیکٹ تاریخ کے اندر ہوا یہ تھا کہ جب صلاح الدین ایوبی کی فوجیں بالکل آ گئی تھیں اور وہ گیٹ بریچ ہو گیا تھا, تو کچھ لوگوں نے کرسچنز نے پہلے سے خودکشی کر دی تھی کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا حال کریں گے ہمارا یہ. لیکن صلاح الدین نے آ کے ان کو یہ آفر کر دی کہ آپ ڈس آرم ہو کے جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو سیف پیسج دیں گے جب تک وہ اپنے ٹھکانے تک پہنچ نہیں جاتا. ना किसी औरत के साथ बुरा होगा, ना किसी बच्चे के साथ होगा, किसी को गुलाम नहीं बनाया जाए, कोई लूट मार नहीं होगी। जो उन लोगों ने, क्रूसेडर्स ने आके टेंपल, जो टेंपलर्स थे उनके, नाइट टेंपलर्स थे, जो कि वो एक और लेक्चर के अंदर मैंने जिक्र किया हुआ फ्री मेसन्स के साथ उसको रिलेट करके, उन्होंने जो अपने क्रॉस भी बना दिए थे मस्जिद अक्सा के ऊपर, तो उनको भी ये नहीं कि तोड़ फोड़ करवा दी सलाउद्दीन अयूबी ने, उनको उतरवा के उनके हवाले किया था और उनको कहा था जो रहना चाहेगा वो रह लेगा, उसको अमन हासिल होगा यहाँ पर। क्रूसेड का सिलसिला चलता रहा था, फिर उसके बाद रिचर्ड लॉयन हार्ट भी आया था और भी लोग आते रहते, मुसलमानों के हाथ से दोबारा भी ये गई थी जगह, फिर दोबारा वापस भी आई थी ये। तो जहाँ पर अल्लाह ताला ने इस जगह को बहुत इंसानियत के लिए खैर व बरकत की जगह बनाया है, वहाँ पर इसी सरजमीन के ऊपर बहुत कत्ल गारत भी हुए हैं, बहुत जुल्म भी हुआ है, बहुत ज्यादतियाँ भी हुई हैं इस जगह के ऊपर। तो इसके आगे से फिर वो कुछ प्लस माइनस दौर चलता रहा, लेकिन इवेंचुअली फिर आगे जाके बात जो थी वो, जब ऑटोमंस का दौर आया तकरीबन आज से, ऑटोमंस की हुकूमत फ़लस्तीन में आई थी तकरीबन 1300 एडी के अंदर, तब से लेके आगे तक फिर जो है वो एक सॉलिड अमन का वक्त रहा, जिसके अंदर यहूद भी थे उनको भी अमन हासिल रहा, जिसके अंदर जो ईसाई थे वो भी अमन के साथ आ जाया करते थे यहाँ पर, और मुसलमान जो थे उनको भी वहाँ पे फ़िरका वारियत और उसकी लड़ाई झगड़े के बगैर तकरीबन काफ़ी लंबे अरसे तक यहाँ पर जनरली बहुत अमन रहा। जो चीज़ें पहले रिपीट हो चुकी हैं एक और लेक्चर के अंदर, उनको मैं दोबारा नहीं कर रहा, क्योंकि वो जो टेम्पलर्स वाली बात और फ्री मेसन्स वाली बात जो थी वो सारी बात यहीं से सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त और उसके नीचे जो उनको था कि यहाँ से हमारे पास वो इल्म हमें हासिल हो गया है जिसके ज़रिए से हम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी और हमारे भी सेकंड जो हुकूमत हो सकती है वो उसके ज़रिए होगी, बाद में इल्यूमिनाटी का क्या इंडक्शन हो गया, उन चीज़ों को मैं रिपीट नहीं कर रहा, अभी हम दूसरे एंगल के ऊपर बात को लेके चल रहे हैं कि मस्जिद अक्सा और इसके इर्गे जो सरजमीन है उसकी हम तारीख पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये आयत का जिक्र किया था मैंने कि उस कौम के ऊपर हराम कर दिया था अल्लाह ताला ने कि अब ये कौम वापस लौट के नहीं जा सकती, और मैंने इस साथ ये भी बताया था कि आम तौर पे कुरान के तर्जमों के अंदर बनी इसराइल का जिक्र नहीं है इस तर्जमे के अंदर कर रहे होंगे। बैतुल मुकद्दस को, ये भी बात बीच में ऐड अप होनी चाहिए थी स्टार्ट में, कि बैतुल मुकद्दस को मुकद्दस क्यों कहते हैं, मुकद्दस होता है बहुत इज्जत वाली, मर्तबे वाली जगह, बहुत रिस्पेक्टेबल जगह। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम कुदूस भी है, या लड़कियों के नामों में से कुदसिया भी नाम होता है, तो बहुत मर्तबे और मकाम वाली जगह, बहुत बाइज्जत जगह, उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और अक्सा क्यों कहते हैं, अक्सा कहते हैं दूर की चीज़ को, तो मस्जिद अक्सा जो, उसको अक्सा क्यों कहा गया, क्योंकि वो मक्का और मदीना से वो रिलेटिवली वो जगह बहुत दूर थी, इसलिए उसको मस्जिद अक्सा कहा जाता था। तो बहरहाल ये मैंने आयत का जिक्र किया था, आयत 95 है सूरह अंबिया की। अब इसके आगे जो अगली आयत आती है वो क्या आती है, हत्ता, यहाँ तक के, अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि अब वहाँ पर वो लोग वापस नहीं लौट सकते, कभी भी नहीं लौटेंगे, हराम कर दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन आगे एक बात कर दी कि हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब के, फतेहत, जब खोल दिए जाएंगे याजूज व माजूज, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज को खोल दिया जाएगा, तब तक उनके लिए वो जगह हराम रहेगी। अब याजूज माजूज कौन है, याजूज माजूज वो कौम है जिसके बारे में जिक्र कुरान में कहाँ पर आता है, एज अ कॉम जिक्र आता है, जिनके साथ कोई इंटरेक्शन सा था, वो आता है जब ज़ुल्करनैन का वाक्य आता है कि ज़ुल्करनैन ने, ये लेक्चर याजूज माजूज के बारे में नहीं है, ये लेक्चर क्या अलामात क़यामत के बारे में नहीं है, इसलिए बहुत सारी बातें स्किप मैं करके टॉपिक के ऊपर ही फोकस रहूँगा। तो याजूज माजूज के बारे में ज़ुल्करनैन से रिक्वेस्ट की गई थी दो समंदरों के दरमियान में कोई पहाड़ी इलाका था वहाँ पर, कि इधर से वो आते हैं, हमें बहुत तंग करते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं, आप हमारे लिए कुछ करें। तो ज़ुल्करनैन ने क्या किया था कि एक दीवार, एक बंद बांध दिया था उनके लिए। अब इस्लाम की तारीख के अंदर, हमारी थ्रू आउट हिस्ट्री के अंदर, अगेन ये लेक्चर याजूज माजूज के ऊपर नहीं, उसकी डिटेल में नहीं हम जा सकते, ठीक है। इस्लामी तारीख के अंदर याजूज माजूज की इंटरप्रिटेशन जो है ना, वो थ्रू आउट विद टाइम चेंज होती रही है। मिसाल के तौर पर जब बगदाद के ऊपर जब हुआ था, और वो जो तुर्कों ने आके जो तातारी थे उन्होंने हमला किया था, तो उससे पहले तातारियों के लिए कहा जाता था, उस वक्त के स्कॉलर्स कहते थे कि ये याजूज माजूज हैं। इब्ने बतूता ट्रैवलर थे, इब्ने बतूता ने जब सफ़र करके जब वो चाइना की तरफ गए थे और उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना देखी थी और दीवार का जिक्र हुआ था, तो उन्होंने, उनको उस बात के ऊपर शक हुआ था कि ये वो दीवार ना हो, और दूसरी तरफ कौम भी जो थी चाइनीज़ जो कौम थी वो फ़र्क थी। तो मुसलमानों की किताबों या तारीख के अंदर जो चाइना के ऊपर शक जाता है ना कि शायद चाइनीज़ कौम है या उससे इर्गिर्द जो कौम है, वो इब्ने बतूता के दौर के बाद से हुआ था, जब इस तरह का उनको ग्रेट वॉल का जब इंटरेक्शन हुआ था कि ग्रेट वॉल भी कोई है। तो इस मुसलमानों की तारीख के अंदर ना डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दी गई हैं उसके बारे में कि याजूज माजूज जो हैं वो कौन कौन सी है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जब नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने उनको निजात दे दी थी नूह अलैहिस्सलाम को वहाँ से, और उनके साथ बाकी और इस्लामी किताबों के मुताबिक और भी लोग थे शायद जो निजात पाई थी, और बाइबल के मुताबिक तो सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम और उनके तीन बेटे थे, एक बेटा तो गर्क हो गया था लेकिन उनके तीन बेटे थे हाम शाम और याफिस, ये तीन बेटे थे बाइबल के मुताबिक भी और इस्लाम की तारीख के मुताबिक भी, और एक रवायात जो आपसे सल्लम से मुतल्लिक है वो भी। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जो थे वो फिर फैल गए थे, जो याफिस थे उन्होंने रुख किया था नॉर्थ का जिसमें यूरोप भी आ जाता है और ये स्कैंडिनेवियन साइड से ले गए तो रशिया ये पूरा साइड आ जाती है। उनकी नस्ल में उनके सारे बेटे नहीं उनकी नस्ल में पैदा हुए थे इमीडिएट जिनका नाम आता है मेगोग आता है, फिर आगे उन्हीं से आगे फिर गोग भी आता है। तो उनकी नस्ल का एक हिस्सा जो सारे यूरोप इस साइड पे जाके सेटल हुए थे वो जो बाइबल के हिसाब से वो बनते हैं गोग और मेगोग, ठीक है, वो बनते हैं गोग और मेगोग। तो ये कहना जो बहुत सारी जगहों पे इंटरप्रिटेशन है कि याजूज माजूज कोई एक अलग सी कौम है, कोई अलग से लोग हैं, हाइट उनकी कोई डिफरेंट है, खाने पीने की आदतें बड़ी उनकी अजीब सी हैं, कोई अजीब सी ही वो कोई कोई मतलब के इंसान नहीं है, कोई और मखलूक है, ये बात बिल्कुल गलत है। वो आदम अलैहिस्सलाम के ही औलाद में से, नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से, और उनके बेटे भी याफिस की औलाद में से, माजूज की आगे से कौम में से हैं, फिर वो उनकी औलाद में से हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र कर दिया कि जहाँ तक के याजूज और माजूज जो हैं उनको खोल नहीं दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहलिया ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में थे, सो रहे थे और ख्वाब से उठे, सोते हुए उठे और आप सल्लम का जो चेहरा था वो बिल्कुल एक जैसे कहते हैं कि गुस्सा या खौफ उस कैफियत के अंदर था, और आप सल्लम ने उठते साथ ही कलमा पढ़ा और ये फरमाया कि जो अरब हैं वैलुल लिल अरब, अरबों के लिए बहुत सख्त हलाकत और तबाही है उस शर की वजह से जो बहुत करीब आ गया। और आप ने इशारा करके कहा कि याजूज माजूज अपने अंगूठे और इस उंगली के साथ इशारा करके कहा कि उन्होंने इतना सुराख उसमें कर दिया। फिर ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला ने आपसे सल्लम से सवाल पूछा कि अब उनके जो सवाल होते थे वो सवाल होते थे अमल के एतबार से, क्या हमें हलाक कर दिया जाएगा जबकि हम होंगे, हम होते तो हम सवाल उनकी नस्ल के ऊपर पीछे पड़ जाते कि वो नक्शे में कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। क्या उन्होंने पूछा कि हमें क्या नुकसान पहुँचा सकते, क्या वो हमें हलाक कर देंगे। अरबों के लिए आपसे सल्लम ने फरमाया ना अरबों के लिए हलाकत है, तो क्या तो क्या हम हलाक हो जाएंगे जबकि हम नेक भी होंगे हम में से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हाँ जब शर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जब बुराई आम हो जाएगी शर फैल जाएगा तो यस होगा ये। अगेन मैं एक और इस बात को सपोर्ट करने के लिए कि याजूज माजूज के फैलने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया में एकदम से फसाद हो जाएगा जो हमारे जहनों में आम तौर पर बैठा हुआ है, आप सल्लम की हदीस है, आप सल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज के खुरूज के बाद भी लोग हज और उमरा करते रहेंगे, याजूज और माजूज के खुरूज के बाद भी लोग हज और उमरा करते रहेंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि ऐसा नहीं है कि जिस तरह वो एक मंजर बना हुआ है कि वो हर दरिया की तरफ चले जाएंगे, हर चीज़ पीना शुरू हो जाएंगे, और लिटरल सेंस में ये हदीस नहीं है, जितने भी याजूज माजूज से रिलेटेड हैं वो सारी हदीसें लिटरल सेंस में नहीं है। यहाँ पे मैं इसको क्यों रिलेट करना चाह रहा हूँ, यानी कि कहाँ बैतुल मुक़द्दस की बात हो रही है और हम याजूज माजूज के साथ कहाँ से हम बीच में रिलेट करना शुरू हो गए हैं। अल्लाह ताला ने कह दिया कि इस कौम के ऊपर हराम हो गई है ये सरजमीन, लेकिन वो तो वापस आ गए हैं इसराइल के अंदर, हराम तो नहीं हुई, वो तो वापस आ गए ना इसराइल के अंदर, अभी तो नहीं आए, उनको तो 69 ईयर्स हो गए, अगले साल वो 70 ईयर्स अपने सेलिब्रेट कर रहे होंगे। 100 साल पहले जो उस दूसरे जो लेक्चर थे उसके अंदर भी इसकी डिटेल मेंशन की हुई थी, 100 साल पहले जो ब्रिटेन ने बैलफोर डिक्लेरेशन दे दिया था, मैंडेट दे दिया था, इजाज़त दे दी थी कि ये खुले आम तरीके से आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, उमर बिन ख़ताब ने जो वादा किया था ख़त्म, وہ ختم ہو گیا, جو عمر بن خطاب کے دور سے بات چلتی آ رہی تھی وہ بات ختم ہے. تو یہ تو قوم آ گئی ہے ادھر واپس, بنی اسرائیل تو واپس آ گئے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بات جو تھی کہ ان کو حرام کر دیا گیا ہے, یہاں تک کہ جب تک یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ نہیں کھول دیے جائیں گے. تو اس سے یہ سمجھ لگتی ہے کہ یاجوج ماجوج جو ہیں وہ ان کا راستہ جو بند تھا وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے, تب یہ قوم واپس آئی ہے, تب یہ قوم واپس آ کے آباد ہوئی ہے. اور برٹن نے جو مینڈیٹ دیا تھا برٹش کے نہ بادشاہوں میں آج تک کوئی یہودی نہیں رہا, بالفور خود جو تھا وہ بھی کوئی یہودی نہیں تھا, اور یہ جو جتنے بھی پروٹیکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ امریکہ بھی ادھر جا رہا ہے ان کو اسرائیل کی ہر چیز کی پروٹیکشن کی بات کر رہا ہے, اور یورپ کے ہر ملک جو ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ایک جملہ بھی ہو جائے تو اینٹی سیمیٹک آپ ہو گئے ہیں, آپ نے تو ایسا کوئی پرابلی گناہ کر دیا ہے کہ جو قابل تصور ہو گیا. وہ تو یہ کانسیپٹ مجھے خود ذاتی طور پہ سمجھنے میں ابزارو کرنے میں کافی ٹائم لگا ہے. میں نے اس لیکچر کے اندر بھی ایک اسکالر کا ذکر کیا تھا عمران حسین, انہوں نے اس چیز کو بہت فل ان دا بلینکس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں, لیکن بہرحال یہ کلو وہاں سے انہوں نے مہیا کیا, یہ والا کلو کہ یاجوج ماجوج جو ہیں کیونکہ بائبل اور اس کے مطابق کنفرم بات, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہیں ان کے اندر بھی کنفرم بات کہ یاجوج ماجوج یافس کی اولاد میں سے تھے, اور انہوں نے رخ کیا تھا یورپ کا اور اوپر کا, اور یہ پورا یورپ اور آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ بھی رشیا تک لے جائیں اور امریکہ تک لے جائیں, یہ ساری ایک ہی قوم ہے نا, یہ سارے جو ہیں یہ یورپین ریس ہے, یہ رشیا سمیت, رشیا جو ہے وہ ایشیا تو نہیں ہے, وہ یعنی کہ وہ چائنیز یا ان کے ساتھ تو نہیں ہے, وہ بالکل یورپینز ہیں, وہ یہ پوری ایک ریس ہے, اس ریس میں سے ہیں یاجوج ماجوج, ان کے پاس کنٹرول ہے, وہ ان کے پاس اختیار ہے, جس کی وجہ سے ابھی جو زمانہ ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. صحیح بخاری کی کتاب الجزیہ کے اندر حدیث ہے 3177, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تبوک کے واپسی کے اوپر, تبوک سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 6 چیزیں گن لو اب سے جو قیامت کا کاؤنٹ ڈاؤن بتائیں گی. سب سے پہلے فرمایا کہ میری موت قیامت کی ایک پہلی نشانی ہو جائے گی, پھر اس کے بعد تم یروشلم کو فتح کر لو گے, حضرت عمر کے دور میں یہ ہو گیا, پھر ایک بیماری پھیلے گی, ایک پلیگ پھیلے گا, یہ پرابلی وہ بیماری کی طرف اشارہ ہے جو کہ جس کے ذریعے جو ادھر ہی شام کے علاقے میں پھیلی تھی, جس کے ذریعے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو عبید اللہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایسے بہت بڑے صحابی جو تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے, ہلاک ہو گئے تھے. پھر مال کا اس قدر بڑھ جانا کہ اگر کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو وہ اسے خوش نہیں ہوگا. پہلے انڈرسٹینڈ کریں کہ 100 دینار کیا چیز ہوتی تھی, دینار ہوتا تھا گولڈ کوائن کو کہتے تھے, درہم ہوتا تھا سلور کوائن. حضرت ابو بکر نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا تھا 10 دینار کے, بس منہ بولی قیمت تھی, اس نے بہت بڑھا کے بات بولی تھی, اس نے کہا تھا 10 دینار. تو حضرت ابو بکر نے فوراً پکڑا دیا, کہہ دیا تھا کہ تو میں 3 دینار بھی اگر تم دیتے نا تو تب بھی میں تمہیں دے دیتا, یہ تو ایسے ہیں. تو 10 دینار کی ویلیو ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ اگر تمہیں 100 دینار بھی دیے جائیں گے تو تمہیں وہ ویلیو نہیں فیل ہوگی اس کی. یہ دور گزر بھی چکا عربوں کے اوپر جب زکوٰۃ والا معاملہ ایسا ہو گیا تھا کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے, دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک ایسا فتنہ آئے گا جسے کوئی عرب جو ہے وہ بچ نہیں سکے گا, کسی عرب کا گھر جو ہوگا وہ اس سے محفوظ نہیں ہوگا, ایک ایسا فتنہ ہوگا. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ یورپین کولونائزیشن تھی, جب پورا جو عرب کنٹریز جتنے بھی عرب کنٹریز تھے وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی کے حصے میں آ گئے, یا فرانس کے حصے میں آئے یا وہ برٹن کے حصے میں آ گئے. پھر تمہارا ایک معاہدہ ہوگا بنی اسفار کے ساتھ. بنی اسفار جو ہے اس سے مراد ہوتی تھی بیزنٹائن امپائر ہوتا تھا مراد, رومنز مراد ہوتے تھے اس سے, ٹھیک ہے, اہل روم, اور رومنز کیونکہ کرسچن ہوتے تھے اور یہ یورپ ہی ان کنٹریز کے اندر ہی ہوتے تھے, تو انہی لوگوں کے ساتھ تمہارا ایک معاہدہ ہوگا. وہ معاہدہ کیا ہے؟ جس معاہدے کے تحت یہ تمام عرب ممالک جو تھے یہ آزاد ہوئے, یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ غلطیاں ہوں, یہ تمام عرب ممالک آزاد ہوئے تھے. ان تمام عربوں کے اندر سوائے ایجپٹ کی تاریخ کے علاوہ باقی سب جو تھے ان کے اندر انہوں نے سلطنت عثمانی کو ختم کر کے لوکل پراکسی گورنمنٹس بنا دی تھیں اپنی, लोकल जो जो छोटे छोटे अरब थे उन सबको बना दिया। इतना छोटा सा मुल्क कुवैत है, छोटा सा मुल्क बहरीन है, छोटा सा मुल्क कतर है, फिर उसी के साथ साथ ये इराक और सऊदी अरब, ये तो वाहिद मुल्क है जो किसी बंदे के नाम के ऊपर है, एक फैमिली के नाम के ऊपर है, सऊदी अरब। तो ये जितने भी अरब स्टेट्स थे, ये जॉर्डन का अलग होना, लेबनान का अलग हो जाना, ये सारे के सारे जितने भी छोटे स्टेट थे ये माहदे के तहत हुए थे। एक ट्रूस हुआ था कि तुम्हें इसका दिया जा रहा है, तुम्हें ये हिस्सा दिया जा रहा है, तुम्हें ये हिस्से दिया जा रहा है, और अरब उस माहदे के मुताबिक बड़े खुश खुश चलते रहे। बगावत की किसके ख़िलाफ़? उन्होंने तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावत की, खिलाफत ख़त्म करवाई, और उसके बाद फिर उन्होंने इस माहदे में जो चल रहे थे, तो फिर आगे आपसे सलम ने क्या फ़रमाया, वो फिर तुम्हें उस बात के ऊपर बिट्रे करेंगे, धोखा देंगे, और 80 झंडों तले तुम्हारे साथ हमलावर होंगे, लड़ेंगे, और हर झंडे तले 12,000 की फ़ौज होगी। ये भी एक हदीस और उसका जो इम्प्लिकेशन है वो मैंने ज़िक्र किया था उस लेक्चर्स के अंदर। ये 9/11 से पहले जो CIA का जो 80 वर्ल्ड वाइड अटैक मैट्रिक्स मैंने कहा, तब भी कहा था सर्च करके देख लें तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। ये आप सल्लम ने सीक्वेंस के अंदर कुछ अलामत बताई थी कि हालात किस तरफ जाएंगे, मिडिल ईस्ट के हालात किस तरफ जाएंगे। तो इन्हीं माहदों के अंदर एक जो काम था वो फ़लस्तीन का था। फ़लस्तीन उन्होंने अरबों के हवाले नहीं किया, बाकी सब केसेस में क्या किया उन्होंने, लोकल अरब्स के हवाले कर दिए मुल्क, ये तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले, तुम्हारे हवाले। मिसाल के तौर पर जो शरीफ हुसैन जो था, जो गवर्नर था यहाँ मक्का साइड का, उसको फारिग, उसको बगावत के लिए उकसाया कि वो तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावत करे, सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत करें, और रियाद से सऊद को, अपने सऊद को और उनके आल को उठा दिया कि तुम बगावत करो शरीफ हुसैन के ख़िलाफ़। शरीफ हुसैन को वहाँ से निकलवा दिया गया, और जब अरब रेवोल्यूशन की 1919 के अंदर यूरोप के अंदर हुआ था, तो लिटरली बांटे गए थे मुल्क। तो शरीफ हुसैन के बेटे फैसल को इराक का मुल्क मिल गया था, इस तरह मुल्क बांटे गए थे उनको। 1916 का ये था, फ्रांस और ब्रिटेन का था एग्रीमेंट, और 1919 ऑनवर्ड्स कह दिया ठीक है हम इस तरह आज़ाद करेंगे, हम एक एक मुल्क आज़ाद करेंगे। लेकिन उसके अंदर क्या था, साथ ये शामिल था कि आपने फ़लस्तीन के मामले में कुछ कहना नहीं है, और वो आज तक कुछ नहीं कह रहे उस बारे में, फ़लस्तीन के मामले में कुछ नहीं कह रहे। वहाँ पे उन्होंने हवाले कर दिया वो यहूदियों के ज़ायनिस्ट मूवमेंट के हिसाब से, जो ज़ायनिस्ट मूवमेंट थी उसके हवाले कर दिया कि आपको मैंडेट है आप इसके ख़िलाफ़ लड़े करें। और वो तब उस लेक्चर के अंदर ये भी दिखाया था कि लेटर भी रॉसचाइल्ड को लिखा था, ज़ायनिस्ट कांग्रेस को नहीं लिखा था, रॉसचाइल्ड को लेटर लिखा था कि हमने ये ऑर्डर दे दिए, अब आप इसको फ्रीली जिस तरह से आप चाह रहे हैं करें। इस तरह करके जो ज़बरदस्ती नहीं निकाले जा सक रहे थे, हालात ख़राब करने की वजह से नहीं निकल रहे थे, उनको टॉर्चर कैंप्स में डाल के निकाला जा रहा था। 7 लाख से 7.5 लाख के दरमियान फ़लस्तीनी निकाला गया था यहाँ से, 7 लाख से 7.5 लाख के दरमियान फ़लस्तीनी निकाला गया था। इसराइल ने जब कब्ज़ा कर लिया इस सारे इलाके के ऊपर, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए UN बनाई गई थी ऑफकोर्स, और UN के थ्रू ये था कि इनको मिल जाएगा क्या मैंडेट, मिल गया इन्हें। 2-स्टेट सोल्यूशन की बात चलती रही तब से लेके, जाना 2-स्टेट सोल्यूशन होगा इनके साथ, 2-स्टेट सोल्यूशन होगा। 1967 की वॉर के बाद जब उन्होंने उसको कब्ज़ा पूरे जुलूसरम के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, तो उसकी अभी चंद दिन पहले, जिस तरह अमेरिका हमेशा करता है कि एक ख़ास ज़माना गुजर जाता है तो अपने जो पुरानी जो फाइल्स होती हैं ना उनको पब्लिक करते हैं कि पहले तब क्या डिस्कशन हुई थी वगैरह, तो 6-डे वॉर के अंदर उनका ये पूरा ख्याल था। ऑल्दो वो शुरू से करते आ रहे हैं क्या गज़ा, अगर आप मैप पे देखें ना पतला सा गज़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा एरिया। उन्होंने कहा था हम पानी बंद करेंगे इस इलाके का, और बंद ही रख देंगे हम, ये लोग खुद ही निकलेंगे यहाँ से, ये लोग सब लोग खुद ही निकलेंगे, और हम फिर इवेंचुअली वहाँ पे हमारे कब्ज़े में आ जाएगा वेस्ट बैंक और ये गज़ा, ये दो एरियाज ही रह गए हैं सिर्फ उनके लिए। लेकिन वो कौम भी अभी तक कायम है जो फ़लस्तीनी है, वो भी तमाम मुश्किलात के बावजूद, तमाम तकालीफ के बावजूद वो कौम भी कायम है उसके ऊपर। 67 की वॉर भी गुजर गई, 73 का भी वाकया गुजर गया, फिर उसके बाद आगे चलते चलते जो हर कुछ अरसे बाद लड़ाई करते, अब उनको एक नया बहाना मिल गया है हमास का, कि हमास जो है वो मिलिटेंट एक फोर्स है, हमास जो है वो दहशतगर्द है, जिसके लिए हमें ये प्रोटेक्शन करनी है। तो ये एक फिनोमेना होता है कि जब जुल्म एक ख़ास लेवल पे चला जाता है तो नेचुरली रेडिकलाइजेशन की तरफ जाते हैं रेडिकलाइजेशन जो होती है वो एक नेचुरल फिनोमेना होता है. इसी के करीब का 1967 की वॉर के बाद और उसके बाद यूएन के हुए चार्टर और सब कुछ जितने भी उनको पुश मिलता जा रहा है, इसराइल के हर जुल्म के खिलाफ वीटो हो जाता है और बात आगे नहीं जाते. तो 1969 के से आगे जो है वो फिर हम लोगों ने, मुसलमानों ने OIC बनाई. ये जो आमतौर पर बोला जाता है ना 57 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, जबकि एक्चुअल आप काउंट करें तो 57 मुस्लिम कंट्रीज़ नहीं है, वो 57 का जो काउंट है वो OIC का काउंट है. उसमें इवन वो कंट्रीज़ भी शामिल हैं जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं या मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत अच्छी है वहाँ पर, कुछ कंट्रीज़ ऑब्ज़र्वर के तौर के ऊपर भी हैं. तो प्रॉबली उसके बाद, यूएन के बाद ना, काउंट के अतबार से 57 एक बहुत स्ट्रांग वो है, काउंट है, बहुत बड़ा एक काउंट वाला बनता है. लेकिन ये भी एक ऐसा है जो हमेशा जो है वो एक खोखली लिप सर्विस करते रहे हैं. हम लोग अपने मसलियत में हम फंसे होते हैं हमेशा, हम लोग हमेशा अपनी मजबूरी के अंदर फंसे हुए होते हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते, ना फ़लस्तीन के लिए कुछ कर पाते हैं, ना किसी और मुल्क के अंदर कुछ कर पाते हैं. मिसाल के तौर पे रोहिंग्या के अंदर जो हुआ, म्यांमार के अंदर हुआ, या जिसको आसान लफ्ज़ों में हम बर्मा कहते हैं, उनके अंदर जो कुछ हुआ हम तो कुछ नहीं कह सके. सबसे आगे बढ़ के अगर किसी ने बोला या किया तो वो टर्की ने किया, लेकिन वो भी किस हद तक किया, खाने पीने की चीज़ें भेज देंगे, मेडिकल फैसिलिटीज़ भेज देंगे हम वहाँ पे. बांग्लादेश से कहा कि आप अपने बॉर्डर्स ओपन कर लें ताकि उनको कोई ना कोई फैसिलिटेशन हो जाए, वरना अदरवाइज तो OIC या कोई भी मुस्लिम कंट्री है वो साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है. और अब जो चीज़ हुई है वो ये कि रिसेंट ये जो पिछले अरब स्प्रिंग के नाम के बहाने ये जो पूरे मिडल ईस्ट के अंदर जो खाना जंगी चल गई है, हर तरफ मुल्क अपने अंदर लड़ रहे हैं या मुल्क दूसरे मुल्कों से लड़ना शुरू हो गए हैं, और शिया सुन्नी की जो आपस में जो फसाद और लड़ाई है इसको इस लेवल पे ले गए हैं कि अब OIC जब हुई तो वो सऊदी अरब ने कॉल नहीं किया, मक्का में नहीं हुई, वो कहाँ पे हुई है, टर्की के कहने के ऊपर इस्तांबुल में हुई है. उधर से सऊदी अरब का कोई बंदा नहीं गया खास, UAE के कोई नहीं गए, अरब कंट्रीज़ ने इग्नोर किया उसे, इजिप्ट ने भी उसको इग्नोर किया, और एक आइसोलेशन की कैफियत है. हमारी तरफ से भी कोई कवरेज नहीं आई कि हमारा कोई स्टैंड है पाकिस्तान का, यानी कि कहने को पाकिस्तान की आर्मी को हम बहुत तारीफ़ कर लेते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी की कैपेबिलिटी क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर भी है, हमारे साथ ये भी है, हमारे साथ वो भी है, खामोशी है बिल्कुल. जो एक अलायंस बनाई कि ये एक ग्रैंड मिलिट्री फोर्स बनाई गई राहिल शरीफ का जो नाम आ रहा था वगैरह, अभी उसकी तरफ से भी किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि उसके क्या रोल हो सकता है इसके अंदर, या क्या होगा या क्या नहीं होगा. ये वो है हमारी ग़ुलामी वाली कैफियत, और वो वाली कैफियत के जिसको आप सल ने कहा था कि हाँ अरब भी हलाक होंगे जब बहुत ज़्यादा ख़राबी फैल जाएगी, और उस ख़राबी को आप सल ने अटैच किया था याजूज माजूज के साथ. याजूज माजूज जब निकल जाएंगे, और वो हर बुलंदी से कुरान में आता है कि उतरते हुए आएंगे, उसको फिज़िकली हो सकता है कोई चीज़ हुई हो, लेकिन जब आप उतर रहे होते हैं पहाड़ से उतर रहे होते हैं तब आप देखें कितना हेस्टली आप उतर रहे होते हैं, जल्दी 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 उतर रहे होते हैं. तो ये पिछले 100 साल के अंदर, 150 साल के अंदर ये आप देखें कि जो फितना है और जो आजमाइश है वो किस कदर फैली है, एकदम से हर फील्ड के अंदर, पूरी दुनिया के हर कोने के अंदर किस तरह से तेज़ी से फैली है. इससे रिलेटेड अब एक अबू दाऊद की हदीस, ये एक आप ने वो तो था 6 वाक़ जो के बिल्कुल सीक्वेंस में और जैसे अब तक हो गए, अब यहाँ से आगे से मूव फॉरवर्ड करते हुए कि आप ने फरमाया जब यरूशलेम जो होगा वो फ्लरिश कर रहा होगा, उसका मकाम और हैसियत है, ये जो ट्रंप ने अनाउंस किया है कि वो कैपिटल बनेगा, ये ट्रंप सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप ऐसा है, उसका नेचर ऐसी है वगैरह, ये और ये सब कुछ प्लान था, ये इसने 2017 में ही होना था, और ट्रंप को भी $20 मिलियन सिर्फ एक जू ने ही दिए थे ताकि वो अनाउंस करे जेरूशलम को इन 2017 के वो कैपिटल होगा इसराइल का, लीविंग असाइड के बाकी दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, और वाकई ऐसे ही है, बाकी दुनिया जो मर्जी बोलती रहे, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ने वाला उससे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. अमेरिका ने अगर इराक़ के ऊपर अटैक कर लिया था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का नाम और निशान ही नहीं है कहीं पर भी, बंदों पे बंदे मर गए हैं, कोई परवाह नहीं है, तो जॉर्ज बुश के ऊपर, टोनी ब्लेयर के ऊपर तो कभी भी वॉर क्राइम्स के ऊपर कुछ नहीं होने वाला. तो इसी तरह ही जेरूशलम को वर्ल्ड कैपिटल अनाउंस कर दें, OIC अनाउंस करती रहे फ़लस्तीन का हक है, ईस्ट जेरूशलम उसका होगा. और बाकी तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आगे बढ़ के तो कुछ नहीं। मेरा और आपका, हमारा भी क्या मामला हो गया कि मिसाल के तौर पे ये कि कम से कम हम मिनिमम जो कर सकते हैं वो दुआ होती है ना, सबसे गई गुजरी जो हम एफर्ट कर सकते हैं वो दुआ होती है। तो हमारा तो अभी क्या है कि ये जो वाकया हुआ और उसके बाद जो कुछ भी उन्होंने कुछ दिनों के लिए बंद भी कर दिया बैतुल मुकद्दस को, और वहाँ पे जो कुछ भी करते रहे थे ना, मक्का से दुआ हुई उनके हक में, ना मदीना से दुआ हुई, यूएई की मस्जिदों के, तब मैं खुद वहाँ पे था, कोई जिक्र तक नहीं हुआ कहीं पर, जिक्र भी नहीं है उस चीज़ का कोई। यानी कि जो पहले था ना, दुआ तो हम कम से कम कर रहे होते थे, हम तो उससे भी फारिग हुए हैं अभी कि हमें दुआ भी करने की अब ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं। ये अरब कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पे, जो क्योंकि हम ज़्यादा गिला हम इन्हीं कंट्रीज से, मेन कंट्री से कर सकते हैं, क्योंकि हमें इनसे उम्मीद भी जनरली अवाम को होती थी। तो इन कंट्रीज़ ने क्या किया, ये तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल इसराइल के साथ, एक दूसरे को मारने के लिए, एक दूसरे को एक फिरका वारियत की जंग में लग के, तो इसराइल की नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं कि उसको नॉर्मलाइज किया जाए। तो इसराइल जो है वो अभी जो कैपिटल बना है ना, इस ये अब जो पावर थी अमेरिका के पास, जो कि वर्ल्ड के मैटर्स को डिक्टेट कराने की, वो पावर्स अब ज़्यादा जो है ना, पहले जो यहूदी जो शेडो में कर रहे थे, वो ज़्यादा डायरेक्ट अब करेंगे। यरूशलेम ने अभी और फ्लरिश हो के ज़्यादा इनका जो इख्तदार है वो कंट्रोल ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि उसको वो अपने हिसाब से समझते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि बेबलॉन के अंदर उनसे उनके नबी के ज़रिए वादा किया गया था कि उनके मसाया आएंगे, तो वो उसको वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। ये जो बैतुल मुकद्दस की बल्कि आपको तस्वीर दिखाई थी ना, उसमें एक साइड के ऊपर है, उसको वो बोलते हैं ऑलिव गार्डन ग्रेवयार्ड, वहाँ पे वो अपने बड़ों को दफन करते हैं, क्योंकि अभी भी करते हैं जो उनके बड़े लीडर्स फौत हो जाते हैं या रबाइज फौत हो जाते हैं, इस ख्वाहिश के साथ कि जब मसीह आएगा तो वो इनको भी यहाँ से निकालेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखोगे कि यरूशलेम जो है वो अब इसराइल की बात मानी जा रही है, अब इसराइल की बात उठ रही है, इसराइल का एक वैल्यू हासिल हो गई है आलम, पूरे आलम में, और यसरब की कोई हैसियत नहीं होगी फिर, कहाँ पे वो हज़रत उमर का दौर भी था और बाद में मुसलमानों का दौर के कैपिटल था वो मदीना, यसरब रुइंस में होगा, यसरब की कोई परवाह नहीं होने वाली। तो क्या होगा फिर उसके बाद, फिर उसके बाद मलहमा स्टार्ट होंगे, बड़ी बड़ी जंगें शुरू होंगी, जिसका सिलसिला है स्टार्ट। जब बड़ी बड़ी जंगें होंगी तो कुंस्तनतुनिया जो है, कॉन्स्टेंटिपोल, वो फतह हो जाएगा, मुसलमानों के हाथ से चला जाएगा। ये कौन सा मुल्क है? ये आजकल का इस्तंबोल है। इस्तंबोल क्यों है? क्योंकि इस्तंबोल ही तो सबसे ज़्यादा वोकल है इस वक्त, वही तो सबसे ज़्यादा फंस गया, उसने वो सीरिया के अंदर भी लग गया लड़ाई के अंदर, वो दाइश के साथ भी इन्वॉल्व हुआ उसके अंदर, फोर फ्रंट पे आ गया, उसने भी फ़ौजें इराक में दाखिल कर ली और उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर आपने ये भी खबरें पढ़नी शुरू कर दी कि इस्तंबोल में धमाका हुआ, कू की अटैम्प्ट हुई थी, खराबी की तरफ जा रहा है वो, ठीक है। और अब क्योंकि वो अभी भी बहुत वोकल हो रहा है, उसने सबसे ज़्यादा उसने बोला ना तैयब अर्दोगान ने, तो उसने क्या कह दिया कि ईस्ट यरूशलेम जो है हम वहाँ पे अपनी एम्बेसी मूव करेंगे, ये 2 दिन पुरानी खबर है ये। तो वो इस्तंबुल निकल जाएगा, इस्तंबुल तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, और जब इस्तंबुल चला जाएगा तुम्हारे हाथ से, फिर दज्जाल सामने आ जाएगा, जो अभी तक एक शेडो के फॉर्म के अंदर काम चल रहा था, दज्जाल खुद ज़ाती तौर पर फिर सामने आ जाएगा। और बैतुल मुकद्दस जो है, जहाँ पे उन्होंने थ्रोन ऑफ डेविड, जो जो उनका गोल्डन एज होती थी जिसको वो कंसिडर करते थे, वो उसका ख्वाब फिर दोबारा से उसको पूरा करेंगे। तो 2017 क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये उनके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल जो एस्टिमेट्स हैं ना, उससे भी इम्पॉर्टेंट है। ये 150th एनिवर्सरी है, एक अमेरिकन राइटर था जिसने एक बाइबल की पुरानी प्रोफेसी है ना, वो उसको रिवाइव करवाया था, अपनी बुक पब्लिश की थी। ये 120th एनिवर्सरी है जब जायनिस्ट मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था और उन्होंने ग्रेटर इसराइल की बात की थी। ये 100th एनिवर्सरी भी है ये साल बालफोर डिक्लेरेशन की भी, और ये 50th एनिवर्सरी भी है 6 डे जो वॉर हुई थी उनके यहाँ। और 2017 का जो था, ये पिछले साल की खबर थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने भरना था, मैं तो अपना ट्विटर का एक सिर्फ यूज़ करता हूँ, तो तब वो जो 20 मिलियन की डोनेशन थी वो पिछले साल की खबर थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी नहीं पढ़ के आया उसे, वो पिछले साल की थी कि 20 मिलियन का दिया था ऑन द कंडीशन के तुमने 2017 में यरूशलेम को कैपिटल डिक्लेयर करना है, वो डिक्लेयर उन्होंने कर दिया। तो ये हैं हालात जिस तरफ जा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम ये तवक्को कर सकें कि हम उससे पहले जो है हम कोई मुसलमान कुछ कर पाएंगे ऐसा कि हम कोई फतह हासिल कर सकें, या हम ये जो जो ये मार्च ऑफ हिस्ट्री ऑफ टाइड ऑफ हिस्ट्री जो है हम इसको बदल पाएंगे. हम ऐसा नहीं कर पाएंगे. अभी जो रियलिटी है अहदीस नबी वसल्लम के मुताबिक ऐसा अभी नहीं होने वाला. अभी जिस तरह जो सीक्वेंस में बातें जा रही हैं, जिस तरफ जा रही हैं, वो आगे अभी बुरे वक्त ही हैं. मलहमा का दौर आएगा. अभी हम लोगों के ऊपर बहुत मुश्किलें और आजमाइशों का वक्त आएगा. अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के साथ एक काम अच्छा ये हुआ है कि पिछले 2 सालों के अंदर हमारी जो इंटरनल जो हम जैसे हम मसले में फंस गए थे, हमारे उसने थोड़ी सी निजात मिली है हमें दहशतगर्दी के मसले के अंदर, जिसके ऊपर बहुत एक्सपेक्टेड था. 2020 की प्रोफेसीज थी और 2000 बहुत करीब करीब की प्रोफेसीज थी कि ये पाकिस्तान बल्कनाइजेशन की तरफ जा रहा है, टूट जाएगा ये, इसमें ये अलग बलूचिस्तान अलग हो जाएगा. फ्री बलूचिस्तान के ऊपर तो कितने थीसिस यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में लिखे जा चुके हैं कि वो उसने अलग हो जाना है, पंजाब अलग हो जाएगा, कराची अलग हो जाएगा, एक अलग बन अपनी एंटिटी बन जाएगा. तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ से हालात बेहतर हुए हैं, हम इंटरनली कुछ बेहतर हुए हैं. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा उम्मत के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम उससे अलूफ रहे हैं उस चीज़ से कि बाकी जो मर्जी होता रहे. अभी हमारा बिल्कुल वो हिसाब हुआ है कि जिस तरह हम एनिमल प्लानट या नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर देखते हैं कि अगर हाइनाज और भेड़िए या शेर जो हैं वो हमला करते हैं रेवड़ों के ऊपर, तो हर कोई बस अपनी जान बचा रहा होता है कि जैसे मैं बच जाऊँ उसके बाद दूसरा जाए वो. तो अब इसका यह मतलब नहीं है, पाकिस्तान अगर मुस्तहकम हुआ है, थोड़ा बेहतर हुआ है, हालात बेहतर हुए हैं, तो उसका यह मतलब नहीं है कि अब हमने सिर्फ इधर ही लगे रहने और बस सिर्फ सी पैक ही है हमारे लिए, और हमारे लिए सिर्फ अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है और अपने हालात बेहतर करने हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ करनी है. हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं आगे की तरफ, और हमारे लिए कुछ पेशन गोइयाँ भी हैं आपसे सल्लम की सरजमीन की तरफ भी. बात हम वापस बैतुल मुकद्दस की तरफ लेके आते हैं कि बैतुल मुकद्दस के साथ जो हमारा ताल्लुक और वास्ता है, ये हदीस जो है अबू दाऊद की किताबुस्सलात के अंदर, ये सनद के अतबार से चाहे ज़ईफ़ है, लेकिन ये आप सल्लम की नसीहत जो है ये आजकल के दौर के ऊपर बहुत एप्लीकेबल होती है, शायद तब इतनी एप्लीकेबल ना होती हो. मैमूना रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लम ने यह फरमाया था बैतुल मुकद्दस के बारे में कि जाओ बैतुल मुकद्दस और वहाँ जाके नमाज पढ़ो. तो आगे क्या फरमाया हुआ है कि ये वो वक्त था, वकानतिल बलादो, ये वो वक्त था जब मुल्कों में और इलाकों में हर्ब हो रही थी, जंग हो रही थी, यानी कि सेफ़ नहीं था वहाँ पे जाना, इजी नहीं था जाना. ऐसा नहीं है कि जैसे हम हज उमरे के लिए जाते हैं, आराम से एक एजेंट को हायर किया और हमने प्रोग्राम बनाया, चले गए VIP हज उमरा करके हम आ गए वापस, ये वो हिसाब नहीं है. तो आप सल्लम ने कहा कि नहीं, तुम जाओ वहाँ पे, और अगर तुम नहीं जा सकते उधर तो कम से कम इतना करो कि उसके जो चराग होते हैं ना, उनको जलाने के लिए जो तेल होता है उसको ही कम से कम भेज दो, वही कम से कम डोनेट कर दो. तुम जाना मुमकिन नहीं है, मेरे और आपके लिए जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं हम तो नहीं जा सकते. इसलिए नहीं कि इसराइल ने मना किया हुआ है, इसलिए नहीं कि हमने कहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम इसराइल को मानते ही नहीं है. पाकिस्तान के पासपोर्ट के अंदर पहला लीफ मोड़े ना तो ये डिक्लेयर्ड है कि ये वैलिड है पासपोर्ट दुनिया के हर मुल्क के लिए सिवाय इसराइल के लिए, इसराइल नहीं जाएंगे, ये वैलिड ही नहीं है डॉक्यूमेंट ये. इसराइल तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ मामलात अच्छे हों, इसराइल तो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भी मामलात अच्छे हों. हम नहीं कर रहे मामलात अच्छे, हम रिकग्नाइज नहीं कर रहे उस चीज़ को, हम उनको वो कह ही नहीं रहे कि तुम लोग हो ही, तुम लोग लुटे रहे हो, तुम लोग यहाँ पर घुस के बैठ गए हो, तुम लोगों का हक नहीं है इसके ऊपर. ये है पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड. अलबत्ता आप में से जो कोई और पासपोर्ट रखता है तो वो ज़रूर जा सकता है यहाँ पे, वो ऑफिशियल इसराइल ही जाएगा, उसको कहीं जॉर्डन या कहीं और से घुसने की ज़रूरत नहीं है या इजिप्ट के थ्रू घुसने की ज़रूरत नहीं है, वो इसराइल जा सकता है वो, और वो वहाँ जाके ही कर सकता. तो जहाँ आप इतनी दुनिया के हिस्से घूमते फिरते हैं तो इसके साथ भी अपना ताल्लुक कायम कर सकते हैं आप. अभी तो बल्कि करंट सिचुएशन ये है कि जो इसराइल का जो इंटेलिजेंस का हेड है उसने मोहम्मद बिन सलमान को इनवाइट किया है. अगस्त और सितंबर के अंदर ना एक ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हुई थी, यहाँ पे नहीं, अरब कंट्रीज़ में भी नहीं, CNN पे भी नहीं, सिर्फ ज्यूइश जो इसराइल के जो न्यूज़पेपर्स हैं और चैनल्स हैं कि इस सऊदी हाई प्रोफाइल विज़िट, वो तस्वीरें वो दिखा रहे थे मोहम्मद बिन सलमान की, इस सऊदी हाई प्रोफाइल विजिट्स इसराइल. तो वो तो नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। किस हिसाब से जा रहे हैं कि उनको ईरान का खौफ दिखा दिया गया है कि ईरान आपको खा जाएगा, तो लिहाजा हमसे आप जहाज़ ख़रीदें, हमारे साथ आप डिफेंस मुआहदे करें, आप ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएं, आप हमारे साथ, हम आपको बचा लेंगे, हम आपको बचा लेंगे। बहुत बड़ी गलती हो रही है, बहुत बड़ी हमाकत हो रही है ये। और उसमें पाकिस्तान का कसूर ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल अपने काम से काम रखने के पोजीशन में बैठा हुआ है। बहुत रेयर कंट्री है पाकिस्तान जो मुसलमान है, इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन ना शिया है ना सुन्नी है, एक एक न्यूट्रल रोल अदा कर सकता है। ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदीया के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। ये दो ही मुल्क हैं, सिर्फ टर्की और पाकिस्तान ही है जो सऊदी अरब और ईरान को करीब कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, उसके लिए लड़ाने से बचा सकते हैं मज़ीद। वरना जिस तरह ये बात चल रही है, तो जिस तरह आपसे सल्लम ने फरमाया था कि ये मामला ख़राब होगा सऊदी अरब के हिसाब से, अगर थोड़ी सी और मैं ओपन बात कर सकूँ, तो अब क्योंकि आखिरी उनका बादशाह है सलमान, जो उस जनरेशन को बिलोंग करता है जिसके सिबलिंग्स सारे बादशाह रहते आए हैं, अब इसने अपने बहुत छोटे बेटे को जो एज के हिसाब से बहुत पीछे है, उसको प्रमोट करते करते डिफेंस मिनिस्टर, सारी अथॉरिटीज दी, फिर डिप्टी क्राउन, और फिर अब प्रिंस बना दिया उसे, सॉरी क्राउन प्रिंस बना दिया उसे। और बाकी जो बादशाह जो है वो करप्शन के नाम पे जो उनको जेलों में डाला गया, वो अपने बादशाह वापस करेंगे वगैरह, जो बाकी सारे शहनशाहों को और उनको पकड़ना शुरू कर दिया था प्रिंसेस को करप्शन के नाम के ऊपर, ये असल में सारा कुछ हो रहा है अपनी एलिजेंस बनाने के लिए, कि जैसे ही मैं डिक्लेयर करूँगा मोस्ट प्रॉब्ली सलमान के होते हुए मैं ही बादशाह बन जाऊँगा, तो मेरे खिलाफ जो है कोई बगावत ना हो सके, वो उसको सिक्योर करने के लिए, सिर्फ एलिजेंस बनाने के लिए, बैत मेरे हाथ के ऊपर टाइमली सारे कर लें, बाकी कोई मसला नहीं है। और GCC और वो भी अब यूनिटी ख़त्म हो रही है, ये दो UAE और सऊदी अरब जो हैं ये ज़्यादा करीब हो रहे हैं। अफसोस है हमें, अफकोर्स इस बात का हमें बहुत अफसोस है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आप सल्लम की जो अहदीस हैं बिल्कुल अरब जो हैं वो उसके मुताबिक करें, और उलमा खामोश हैं, बड़े बड़े उलमा जितने भी हैं वो मसलहत के तहत या सैलरीज के तहत जॉब की वजह से खामोश हैं, जितने भी अरब कंट्रीज़ के अंदर हैं, वो सिवाय अपनी नमाज़ों में अपने ही बादशाहों की तारीफ़ों करने के अलावा वो और कुछ नहीं कर पा रहे। ये एक हदीस है जो इसके ऊपर प्रॉब्ली कंक्लूजन अच्छी होगी, हदीस और कुरान के आयत के जो कलेक्शन है उसके अंदर आप सल्लम ने फरमाया, एक हदीस है, बल्कि मैं उससे पहले स्टार्ट करता हूँ कि एक हदीस है जो हर फ़िरका बयान करता है कि आप सल्लम ने फरमाया कि एक ग्रोह ऐसा होगा जो क़यामत तक हक पे कायम रहेगा जब तक कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं आ जाते, तो वो हर फ़िरका हर क्या कहते हैं वो हम हैं जी, अपने लिए वो उसको बयान करते हैं, वही मतन वही सब कुछ है, लेकिन ये कंप्लीट हदीस है। सनद के अतबार से ये दो तीन रवायात ज़यीफ़ ही हैं, लेकिन इनको हम पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से एक ताइफ़तुन यानी कि एक गिरोह हमेशा ऐसा होगा जो हक पर कायम होगा, जब दूसरे पीठ फेर देंगे, दूसरे मुंह मोड़ लेंगे, या दूसरे उनका साथ नहीं देंगे, दूसरे फिर जाएंगे, ये हक पर कायम रहेगा, उनका फिरना इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, इनको कोई तकलीफ नहीं दे सकेगा, यहां तक कि अल्लाह ताला का फैसला हो जाएगा, ये कायम रहेंगे हक के ऊपर। पूछा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये कौन है, ऐना हुम, कौन है ये अल्लाह के रसूल सल्लम, ये लोग कौन है, तो आप सल्लम ने फरमाया बे बैतुल मक़द्दस व अकनाफिन बैतुल मक़द्दस, ये बैतुल मुक़द्दस के वहां के रहने वाले लोग हैं और उसके अतराफ में रहने वाले लोग हैं, ये लोग रहेंगे हक के ऊपर कायम। इसके ऊपर ये नहीं है कि बाकी सब बातिल हैं, लेकिन एक के बारे में आप सल्लम ने खुशखबरी दे दी कि इन ये लोग जो होंगे ये कायम रहेंगे, और ठीक है उनके अंदर कुछ और भी मामलात होंगे, बिगाड़ होगा, लेकिन एटलीस्ट आप देखें कि वो जा नहीं रहे वहाँ से। उनको इतनी अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अमेरिका ने कॉन्डोलीज़ा राइस जब थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो इन्होंने साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में अर्जेंटीना और इनके अंदर वहाँ से बात की थी कि इनको हम माइग्रेट करेंगे और सारा खर्चा हमारे ज़िम्मे होगा, स्पॉन्सर्ड रेफ्यूजीज़ होंगे ये, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करेंगे हम आपको, आपको अपने शहर होंगे आपके अपने, तो इन्होंने वो भी डिनाई कर दिया था उस चीज़ को भी। तो ये आप सल्लम की खुशखबरी है इस जगह के मुताबिक कि ये जो बरकत वाली सरजमीन है यहाँ पर हमेशा वो ग्रोह होगा, ये भी अल्लाह की बरकत में से होगा कि एक ग्रोह हमेशा हक के ऊपर रहेगा कायम, दुनिया नहीं खरीद सकेगी उसे, बाकी हमारे जैसे मुसलमानों का खामोश रहना, मसलियत के तहत पीछे हटना उनको इस चीज़ के ऊपर नहीं परेशान कर सकेगा। और बैत المقدس ही वो जगह है जो क़यामत वाले दिन भी जो तमाम लोगों का जमा होने की जगह यही है, यहीं पर सूर फूका जाएगा और यहीं पर सबको बुलाया जाएगा। मैं और आप कम से कम दोबारा से एक जज्बा तो अपने अंदर डाल सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो अल्फाज अदा किए कि और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके जो चराग हैं उनको जलाने के लिए तेल तो मुहैया कर दो, चाहे उस वक्त जंग का समा बनावाओ, लेकिन कम से कम ये काम तुम रखो। जो ट्रैवल कर सकता है वो ज़रूर वहाँ जाके नमाज पढ़े, वो ज़रूर उधर जाके नमाज पढ़े, आपकी एफिलिएशन होगी। आप में से वो जो कभी भी हज उमरे पे नहीं गया और जो हज उमरा करके आए, दोनों की फीलिंग्स एक जैसी नहीं हो सकती कभी भी। सिमिलरली हम जो तस्वीरों में देखते हैं बैतुल मुकद्दस को, मस्जिद अक्सा को, और जो हम अपनी आंखों से देख के आएंगे, वो दोनों फीलिंग्स कभी भी एक नहीं हो सकेंगी। फिर उसके बाद दुआओं में भी खलूस पैदा होगा इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद शायद कुछ फीलिंग्स भी हमारी जो होंगी वो सिंपथीज होंगी, वो ट्रू सेंस के अंदर उजागर होके आएंगी, ट्रू सेंस के अंदर उठ के आएंगी उस चीज़ के अंदर। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। दुआ का ताल्लुक जो होता है वो हमारी बहुत सारी चीज़ों की ना एफिलिएशंस के साथ भी होता है ताल्लुक। सिर्फ ये नहीं है कि हमारा रिजल्ट आना चाहिए उस चीज़ का, रिजल्ट ओरिएंटेड लाजमी नहीं है कि हम दुआ करेंगे, ठीक है। ये ज़रूर हो सकता है कि मेरी दुआ करने से कोई पर्टिकुलर कुछ लोगों को अल्लाह ताला फ़ायदा दे दें, कुछ पर्टिकुलर लोगों के ऊपर आसानी हो जाए, एक वक्त के अंदर अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल कर लें। ओवरऑल तो यही होना है कि यरूशलेम जो है वो इसराइल के और ज़्यादा कब्ज़े में आएगा, ग्रेटर इसराइल ने बनना है, दजाल ने आना है, याजूज माजूज की पुश्त उनको मिलेगी, उनको सपोर्ट उनकी मिलेगी, ये बात होगी। लेकिन ये तो हो सकता है ना कि क्या पता हमारी दुआ से टेम्प्रेरी तौर पर एक उनको रिलीफ पीरियड मिल जाए। अल्लाह ताला के लिए बाई तो नहीं है ना, अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं है कि सिर्फ दुआ करने से उनको कुछ उसका फ़ायदा हो जाए। दुआ करने के बारे में ये भी तो फरमाया गया है ना कि जब भी इंसान दुआ करता है वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। कबूलियत की तीन शक्लें हैं, मेन मेन गुनाहों में के अगर कोई जिक्र नहीं है ना तो दुआ की कबूलियत की तीन शक्लें होती हैं। जो मांगा अल्लाह ने दे दिया, जो मांगा उसकी जगह अल्लाह ताला ने कोई मुसीबत टाल दी, या तीसरा क्या होता है, दुआएँ अल्लाह ताला ने आखिरत तक के लिए रोक दी और आखिरत में ही एक दफ़ा उस तमाम का अजर दे दिया। तो इस यकीन के साथ भी दुआ मांगी जा सकती है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा, जो हम मांग रहे हैं वो हमें नज़र नहीं आएगा कि वो चीज़ हुई है, ठीक है। फिर दुआ जो होती है वो आपकी एफिलिएशन की अलामत होती है कि आप जिसके लिए दुआ कर रहे हैं, जिसके लिए आप कर रहे हैं, आपके आपके लिए उसके लिए खैर खाई है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ये कह देते हैं कि इसने मर जाना है, इसके चंद घंटे रह गए हैं, इसके चंद दिन रह गए हैं, ये एक ऐसी बीमारी के अंदर है कि ये रहेगा। हम अल्लाह ताला से फिर भी दुआ तो करते हैं ना, हम ये तो नहीं कहते कि सारे असबाब ख़त्म हो गए हैं, कुछ भी नहीं हो सकता, बल्कि नज़र आ रहा है कि इसकी बॉडी किस कदर ख़राब हो गई है, लेकिन तभी हम दुआ तो करते हैं ना उसके लिए, चाहे उसकी आसानी के लिए दुआ कर रहे हो कि उसको तकलीफ़ कम से कम हो, उसके लिए ईमान पर वो कायम रहे। तो दुआ सिर्फ ये नहीं कि बस बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाए तना से, बल्कि दुआ हर तरह की, कि वहाँ के लोग भी साबित कदम रहे, हमारी अल्लाह ताला उसके जगह के साथ अफिलिएशन भी रहे, अब मुसलमानों को जो है वो इत्तेहाद का कोई अपॉर्चुनिटी बन सके, कोई हम लोग एज ए मुल्क कुछ कर सकें उसके लिए, ठीक है। अब ये वो मौका नहीं है, वरना मैंने तो इवन पिछले टाइम के अंदर जब वो था तो मैंने तो इवन वीडियो भी वो दिखाई थी कि बैतुल मुकद्दस के इर्गिर्द वो सारे लोग जमा होकर पाकिस्तान आर्मी के लिए पुकार कर रहे थे कि क्यों नहीं आ रहे हमारी मदद के लिए। अरबी के अंदर था वो सारा, लेकिन वो क्लियर हो रहा था, नीचे ट्रांसलेशन भी लिखी आ रही थी उसकी, पाकिस्तान आर्मी को वो बुला रहे थे।
उधर चले गए तो हमारा क्या होगा?
तो उसके उस केस के अंदर ना कि हम ये तवक्को करना कि दुआ करने से, यानी कि मैं अमलन कुछ ना करूं और दुआ करूं और काम हो जाएगा, तो वाकई ऐसा तो कुछ नहीं है कि मैं करना कुछ ना चाहूं। मैं अब दुआ भी करेंगे तो क्या पता अल्लाह ताला कोई असबाब भी दिखा दे, कोई टाइमलाइन तो हमारे पास नहीं है ना कि वो यरूशलेम के ऊपर अगला स्टेप कब होना है, दज्जाल ने कब आ जाना है, कोई टाइमलाइन तो नहीं है। तो अल्लाह ताला ग्रेस पीरियड भी डाल सकते हैं, कोई रिलीफ का पीरियड भी डाल सकते हैं हमारी दुआओं की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। प्रैक्टिकली दुनिया जब से बड़ी बड़ी वेपन्स बना ली है ना दुनिया ने, तो दुनिया अब लड़ नहीं सकती, बड़ी ताकतें नहीं लड़ सकती अब। मिसाल के तौर पे रशिया का जो व्लादिमीर पुतिन है उसके ऊपर ना एक बहुत लंबे इंटरव्यूज़ के सिलसिले हुए हैं, इंग्लिश में नहीं रशियन के अंदर। जो ऑलिवर स्टोन है, अगर नाम किसी ने सुना हुआ है उसका, उसने इंटरव्यूज़ किए हैं उसके, लंबी लंबी डॉक्यूमेंट्रीज के फॉर्म के अंदर ना इंटरव्यूज हैं, यानी कि इवन ये नहीं कि सिर्फ बैठ के इंटरव्यू हो रहे हैं, कभी वो शिकार पे जा रहे ऑफिस जाते हुए इस तरह करके ना डॉक्यूमेंट्रीज की शक्ल में बनाया। उसमें उसने ऐसे सवाल पूछा रशिया और अमेरिका की लड़ाई के बारे में कि कोल्ड वॉर अगर ना होती है इस तरह करके, तो जज्बात क्या कहते हैं कि हम तो दूसरे को उड़ा के रख देंगे इस तरह के। तो व्लादिमीर पुतिन ने यह जवाब दिया रशियन में, लेकिन उसका नीचे जो वर्सा आ रहा था, सब टाइटल्स आ रहे होते हैं या ट्रांसलेशन आ रही थी, तो उसने कहा इन शॉर्ट उसका मतलब ये है कि इन अ हॉट वॉर बिटवीन US एंड रशिया नो वन विल सर्वाइव इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर अमेरिका और रशिया की कोल्ड वॉर की जगह हॉट वॉर हो जाए। तो ये रियलिस्टिक बात है ये वाली। इंडिया क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर हर तरह की ख्वाहिश रखते हुए कभी भी हिम्मत भी नहीं कर सका अटैक करने की, धमकियाँ तो बहुत दी हैं आपने, फलाने हमारे उसके अंदर मुजाहिदीन को सपोर्ट किया, ये कि हमेशा कुछ अरसे बाद फौजें उठा के बॉर्डर के ऊपर ले आता है इंडिया, हर कुछ अरसे बाद कंपेन करता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पता है उसे कि हमारे पास जो वेपन है वो इस कदर डिस्ट्रक्टिव वेपन है कि हम तो नहीं बचेंगे तो आप भी नहीं बचने वाले, वो अलग सिनेरियो बन जाएगा वाला। तो इस सिनेरियो के साथ पाकिस्तान के पास शाहीन 3 भी है, जो उसको बलूचिस्तान से फायर किया जाए तो इसराइल उसकी जद में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने चलाना है, वो तो बैतुल मुकद्दस की जगह है, वो तो हमारे लिए बहुत मुकर्रम जगह है, वो हमने चलाना नहीं है उससे, इसका ये मतलब नहीं कि हमने चलाना है। हम धमकी तो दे सकते हैं ना उस चीज़ की कि इसराइल, ये भी नहीं कि हम एकदम से अटैक करने वाले हैं, ये भी नहीं, कम से कम कोई स्टेटमेंट तो आनी चाहिए ना हमारी तरफ से। या हम अगर खुद हिम्मत नहीं है ना हमारे अंदर कि हम अलोन कुछ हिम्मत कर सकें, तो OIC के बहाने कुछ और मुसलमानों को इकट्ठा करके एक जॉइंट स्टेटमेंट दिलवा सकते हैं, ताकि हमें अगर इतना डर है तो हम जॉइंट स्टेटमेंट दिलवा दें कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ भाई, ये भी मेरे साथ है। जॉइंट स्टेटमेंट भी हो सकती है, किसी फॉरम के थ्रू भी हो सकती है, डिप्लोमेसी भी तो कोई चीज़ होती है ना आखिर, कोई डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है। कि मिसाल के तौर पर ये कि 1962 में जब इंडिया साइनो इंडिया वॉर हो रही थी, चाइना और इंडिया की जब वॉर हो रही थी, उसकी भी जो सीक्रेट फाइल्स जो अमेरिका के CIA ने रिलीज़ की हैं, उसमें अमेरिका का जो ऑफिसर है CIA का, उसके कमेंट्स थे उस वक्त के ऑफिसर के कि अयूब खान मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्लेमिंग कश्मीर। अयूब खान की हमारे साथ बात चली थी, हम उसको ये कह रहे थे कि आपने इंडिया के साथ जंग नहीं करनी, यानी कि अभी इंडिया इंगेज हो गया ना उसके साथ, आपने पाकिस्तान ने नहीं बीच में घुसना। उसने कहा, CIA के बंदे ने कहा है कि अगर अयूब खान उस वक्त हमसे डिमांड करता ना कश्मीर की, तो हम शायद इंडिया को मना लेते। ये डिप्लोमेसी थी ना, ये तो सिर्फ अयूब खान ने सिर्फ मनवा लेते कि हम आपके साथ जो हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं, हम इंडिया पे अटैक नहीं करेंगे, इंडिया का काम ख़राब नहीं करेंगे, आप कश्मीर की गारंटी दिलवा दें हमें कि जैसे ये जंग ख़त्म होती है तो टेबल टॉक शुरू हो जाएगी, कश्मीर आज़ाद होगा। CIA का कह रहा है कि अयूब खान ने अपॉर्चुनिटी मिस की, तो हम डिप्लोमेसी भी तो कर सकते हैं। कौन कह रहा है कि डायरेक्ट हमने कोई फ़ौज भेजनी है या कोई यूनिट भेजनी है, हम डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं।